देखिए भाई आगे सबक वला युजाफ मौसूफ इला सिफती ही मा बका इल मान अल मुफादी बि तरकी बिल वस्फी बि हाली ही लि अन लि कुल्लि मिन है अतई तरकी बिल वस्फी वल इजाफी मानन आखर ला यकूम अहदुहुमा मकाम अल आखर वलिहादल माना बिआईनिही ला तुजाफु सिफतुन इला मौसूफिहा। भाई गुज़श्ता सबक में बहस चल रही थी कि साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि ये जो अज़्ज़ारिबू का है अलिफ लाम के साथ अज़्ज़ारिबू का ये महमूल है ज़ारिबू का पर। अज़्ज़ारिबू का आम नहवी उलमा तो फरमाते हैं ये आपस में मुजाफ और मुजाफिले नहीं हैं। अज़्ज़ारिब इसमें फाइल है और काफ जमीर मफ़ऊल है और ये मनसूबुल महल है, यहां कोई इजाफत नहीं। लेकिन इमाम सीबुवै और उनके मुत्तबईन जो नहवी हजरात हैं वो फरमाते हैं कि अज़्ज़ारिबू का इसके अंदर भी इजाफत है। अज़्ज़ारिब मुजाफ है और काफ जमीर मुजाफोन इले, तो इस पर इश्काल होता है कि यह तो इजाफत लफ्जी है और इजाफत लफ्जी तख़फीफ का फायदा देती है और अज़्ज़ारिबुका के अंदर कोई तख़फीफ नहीं आई क्योंकि अज़्ज़ारिब से तनवीन अलिफ लाम की वजह से इजाफत से पहले ही गिर चुकी है, तो इजाफत ने किसी किस्म की तख़फीफ का फायदा नहीं दिया, लिहाजा इसको जायज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इसको महमूल करते हैं ज़ारिबुका पर और ज़ारिबुका इसके अंदर इसमें फाइल के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ रही है मफ़ूल बिही की, और नहवी हजरात जो हैं जब इसमें फाइल और इसमें मफ़ूल के साथ मफ़ूल की ज़मीर मुत्तसिल आ जाए तो वहां पर वो इजाफत को लाजिम करार देते हैं और ये नहीं देखते कि इसकी वजह से कोई तख़फीफ आ रही है या नहीं आ रही। तो ज़ारिबुन इसमें फाइल था और इसके साथ काफ जमीर जो है मफ़ूल की आकर जुड़ी, अभी इजाफत नहीं की, पहले ही तनवीन गिर गई ज़मीर मुत्तसिल की वजह से और फिर उसके बाद इजाफत कर दी गई, तो यहां भी इजाफत की वजह से कोई तख़फीफ नहीं आई। तो इमाम सीबवै वगैरह फरमाते हैं जैसे ज़ारिबुका के अंदर कोई तख़फीफ नहीं आई फिर भी इजाफत लफ्जी जायज है वहां पर, तो अज़्ज़ारिबुका यह भी बिल्कुल इसी जैसा है, यानी दोनों एक जैसे हैं, दोनों में मुजाफ जो है वो इसमें फाइल है और मुजाफिले जो है वो जमीर मुत्तसिल है और दोनों के अंदर तनवीन इजाफत से पहले ही गिर चुकी है। ज़ारिबुका इसके अंदर तनवीन गिरी है इजाफत से पहले ही जमीर मुत्तसिल की वजह से और अज़्ज़ारिबुका के अंदर तनवीन इजाफत से पहले ही गिरी है अलिफ लाम की वजह से, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। चुनाचे जब ज़ारिबुका जायज है तो इसी पर हमल करते हुए वो कहते हैं अज़्ज़ारिबुका भी जायज है और ये इजाफत लफ्जी है। और फिर साहिब जामी ने बतलाया था कि ज़ारिबुका इसके अंदर तनवीन इजाफत से पहले ही गिर चुकी है जमीर मुत्तसिल होने की वजह से, इसलिए क्योंकि जमीर मुत्तसिल के होते हुए तनवीन का यहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मसलन यहां तनवीन भी ले आए और जमीर मुत्तसिल भी हो और यूं हो कलाम ज़ारिबुन का, तो जमीर मुत्तसिल भी हो और तनवीन भी हो, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कहीं हमने कलाम अरब में ना ऐसा देखा है और ना सुना है, यह मुमकिन ही नहीं है। जब तनवीन है तो जमीर मुत्तसिल नहीं आ सकती और जब जमीर मुत्तसिल हो तो तनवीन नहीं आ सकती क्योंकि जमीर मुत्तसिल ने साथ जुड़ना है, अगर वो नहीं जुड़ेगी फिर तो वो मुत्तसिल ना रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी, मुनफसिल बन जाएगी भाई। तो लिहाजा जमीर मुत्तसिल के होते हुए तनवीन नहीं आ सकती, तो जैसे ही जमीर मुत्तसिल आई तनवीन गिर गई, अभी इजाफत भी नहीं की तो देखो तनवीन इजाफत से पहले ही गिर गई और फिर इजाफत कर दी गई। हां फिर इस पर गुज़श्ता सबक में कहा था कि हां कोई मोतरिज ये एतराज कर सकता है कि आपने कहा कि ज़ारिबुका के अंदर इजाफत से पहले भी तनवीन नहीं थी, तो कोई कहता है कि नहीं भाई इजाफत से पहले तनवीन का यहां तसव्वुर किया जा सकता है, बाई तौर कि आप यूं कहें कि ज़ारिबुका इसकी असल ज़ारिबुन इयाका है, यानी जमीर मुनफसिल थी असल में यहां पर, अब यहां देखो तनवीन भी है और जमीर मुनफसिल भी है और जमीर मुनफसिल के साथ तो तनवीन आ सकती है क्योंकि वह लफ्ज के साथ जुड़ती नहीं है, अलग रहती है, तो ज़ारिबुन इया का, बात समझ में आ गई। इन्होंने क्या कहा था कि जारिबुका के अंदर तनवीन इजाफत से पहले ही गिर गई। कोई मोतरिस कह सकता है कि जारिबुका की असल जारिबुन इयाका थी, लिहाजा उस पहले तनवीन मौजूद थी और फिर जब इजाफत की तो तनवीन गिर गई, तो यूं भी तो कह सकता है कोई ना कोई मोतरिस, ये एतराज कर सकता है। और फिर मैंने यहां आपको यह बतलाया था कि जारिबुन इयाका, अब हम इजाफत करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, इजाफत से पहले देखो तनवीन मौजूद है, फिर जब हम इजाफत करेंगे तो तनवीन गिर जाएगी। और फिर मैंने तफसील बतलाई थी कि देखो जमीरें पांच किस्म पर हैं, पहले इब्तिदाई तौर पर तीन किस्में हैं, या जमीर मरफू होगी या मनसूब होगी या मजरूर होगी। फिर ये जो मरफू है ये दो किस्म पर है, मुत्तसिल भी हो सकती है और मुनफसिल भी। इसी तरह मनसूब भी दो किस्म पर है, मुनफसिल भी हो सकती है और मुत्तसिल भी हो सकती है, जबकि मजरूर सिर्फ मुत्तसिल है, मजरूर मुनफसिल जमीर है ही नहीं। तो कुल गोया पांच किस्म की जमीरें हो गई, मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल, और मनसूब मुत्तसिल और मनसूब मुनफसिल, और मजरूर सिर्फ मुत्तसिल ही है। और हर एक की चौदह चौदह सूरतें हैं, क्योंकि क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, तो देखो ये चौदह सूरतें बनती हैं। छह जमीरें किसकी, गायब की, जिसमें से तीन मुजक्कर की हैं और तीन मुअन्नस की। फिर छह जमीरें मुखातब की हैं, तीन मुजक्कर की और तीन मुअन्नस की, और मुतकल्लिम की दो जमीरें हैं, तो कुल चौदह हैं। तो ये पांचों के अंदर ये चौदह सूरतें आएंगी, तो चौदह पंजे सत्तर, तो ये सत्तर जमीरें हैं कुल। भाई कुल क्या है, सत्तर जमीरें। मरफू और मुत्तसिल की मिसाल मैंने जिक्र की थी, जैसे जराबतु, ये जरबतु के अंदर ता जमीर किसकी है, मुतकल्लिम की है, और ये मरफू है। मरफू क्यों, क्योंकि ये फाइल है और फाइल क्या होता है, मरफू। तो देखो ये मरफू है और मुत्तसिल है, साथ जुड़ी हुई है। और मरफू मुनफसिल जैसे आना, जब रफे वाला मकाम हो और जमीर मुतकल्लिम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुनफसिल लाना चाहते हैं तो आना लेकर आएंगे, और अगर नसब वाला मकाम हो तो फिर ये आना नहीं लाएंगे क्योंकि ये तो मरफू है। तो फिर वहां पर अगर आप नसब वाला मकाम है और जमीरे मुत्तसिल लाना चाहते हैं मुतकल्लिम की, तो फिर वहां या लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, जैसे जाराबानी, उसने मेरी पिटाई की, तो ये या जमीर मफूल की है और मफूल क्या होता है, मनसूब, और ये मुत्तसिल है, जाराबा के साथ जुड़ी हुई है। और अगर आप मनसूब मुनफसिल लाना चाहते हैं तो वो इयाया है, इयाया इयाना इयाका इयाकुमा इयाकुम, आपने जमीरें पढ़ी हैं, तो ये जो इयाया है ये जमीर मनसूब है, तो जहां नसब वाला मकाम हो और आप मुतकल्लिम की जमीरें मुनफसिल लाना चाहें तो फिर इयाया लाएंगे। और उसके बाद जो मजरूर है वो सिर्फ मुत्तसिल होती है, जैसे किताबी, ये या जमीर क्या है, मुजाफिले है, और मुजाफिले क्या होता है, मजरूर, और ये मुत्तसिल है। या इसी तरह अलैया, आला के साथ या जमीर आ गई, और आला क्या है, हर्फ जर, ये जर देता है, तो ये जो या जमीर साथ जुड़ गई और फिर या का याम इदगाम हो गया, तो ये जो या जमीर साथ आकर जुड़ी ये कौन सी है, मजरूर मुत्तसिल। मजरूर दो ही है ना, एक जिस पर हर्फ जर दाखिल हो और एक जो मुजाफिले हो, तो अलैया ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है और इस पर हर्फ जर दाखिल है। और किताबी या गुलामी ये क्या है, ये जमीरे, ये भी जमीर मजरूर मुत्तसिल है और ये मुजाफिले है। बात समझ में आ गई। तो असल में था जारिबुन इया का, अब इजाफत का इरादा किया गया, जब इजाफत का इरादा किया गया तो अब इया का जमीर है ये तो मनसूब है, इसको बदलना पड़ेगा किससे, मजरूर से, क्योंकि मुजाफिले क्या होता है, मजरूर, और मजरूर तो सिर्फ कौन सी है, मुत्तसिल है, मुनफसिल है ही नहीं, तो जब वो मुत्तसिल आप इजाफत करते हुए ला रहे हैं तो वो साथ जुड़ेगी, इजाफत होगी और तनवीन भी जारिबुन से गिर जाएगी। तो देखो इजाफत की वजह से जारिब से तनवीन गिर गई और इया का किससे बदल गई, काफ से बदल गई, मुनफसिल यानी मुत्तसिल से बदल गई, तो दोनों में तख़फीफ आ गई, मुजाफ में भी तख़फीफ आई उससे तनवीन गिर गई, और मुजाफिले में भी तख़फीफ आई कि वो मुनफसिल से बदल गया ज़मीर मुत्तसिल की तरफ। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद ये कोई मोतरीज एतराज कर रहा है कि भाई जारिबुका की असल जारिबुन इयाका भी तो हो सकती है, और फिर उसके बाद हमल किया गया अज जारिबुका का किस पर, इस जारिबुका पर, यह जारिबुका जिसकी असल क्या थी, जारिबुन इयाका थी, इस पर हमल किया गया अज जारिबुका का। और दोनों में इश्तराक है किस चीज में, कि दोनों में मुजाफ इसमें फाइल है, अजारिबुका में भी और जारिबुका में भी, और दोनों में मुजाफिल जो है वो जमीर मुत्तसिल है, और हज़्फ तनवीन का एतबार नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि हज़्फ तनवीन जारिबुका में इजाफत की वजह से हुई है और अजारिबुका में हज़्फ तनवीन इजाफत से पहले हुई है। बात समझ में आ गई जी। उसके बाद फिर साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि ये जो मुसन्निफ का कौल आया था मातिन का, वज़ाउफल वाहिबुल मिअतिल हिजानी, और इसी तरह जो मातिन का कौल आया था अज़ारिबु रजुली और अज़ारिबु का, इन सब को हमने इनकी नजीरों पर महमूल करते हुए जवाब बनाया था इमाम फर्रा के इस्तिदलाल का, किसकी तरफ से, साहिब काफिया की तरफ से, कि गोया साहिब काफिया यहां इमाम फर्रा के जो इस्तिदलाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं। ज़ाउफल वाहिबुल मिअतिल हिजानी इसके जरिए भी जवाब दिया, और अज़ारिबुर रजुली और अज़ारिबु का इसके जरिए भी साहिब काफिया क्या करना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं इमाम फर्रा के इस्तिदलाल का। और आप चाहें तो इनको अलग अलग मसले भी बना सकते हैं, जो माकबल में अज़ारिबु ज़ैदीन आया था उससे, उसकी मुनासिबत से साहिब काफिया ने तीन अलग मसले जिक्र किए, आप चाहें तो इनको अलग मसले बना दें। इस तरह के साहिब काफिया ने जब जिक्र आ गया कि अज़ारिबु का यह जायज नहीं क्योंकि इसके अंदर इजाफत लफ्जी हो रही है, इजाफत लफ्जी हो रही है, तो फिर इस पर इश्काल होता है कि देखो आशा शायर का शेर है और उसमें वो कहता है अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अबदिहा, तो इसके अंदर उसने अबदिहा का आतफ किया है अलमिअतिल हिजान पर, और अलमियतिल हिजान को हटाएं और उसकी जगह अब्दिहा रख दें तो इबारत गोया क्या बन गई, अलवाहिबो अब्दिहा, ये तो बिल्कुल अज़ारिबु ज़ैदीन जैसी सूरत बन गई। तो जैसे अज़ारिबु ज़ैदीन मुमतनिया था, इसको भी क्या होना चाहिए, मुमतने होना चाहिए। तो साहिब काफिया फरमा रहे हैं कि इस किस्म की तरकीब ज़ईफ है, इसको ज़ईफ कहा मुमतने नहीं कहा क्योंकि यह सूरत मातूफ में बन रही है, इस किस्म की तरकीब क्या है, ज़ईफ है। किस किस्म की तरकीब, जिसमें, फिर अब तरकीब पे नजर रखना, अलवाहिबुल मिअतिल हिजानी व अबदिहा, यह अबदिहा का आतफ किस पर है, अलमिअतिल हिजान पर। तो साहिब काफिया बतलाना यह चाहते हैं जब आप आतफ करें गैर मुआर्रफ बिल्लाम का, किस पर, मुआर्रफ बिल्लाम पर, और वो मुआर्रफ बिल्लाम ऐसा हो कि उसकी तरफ एक ऐसी सिफत मुजाफ हो रही है वो, कि वो सिफत भी क्या है, मुआर्रफ बिल्लाम है, तो ये आतफ ज़ईफ है क्योंकि इसमें किस जैसी सूरत बनेगी, अज़ारिबु ज़ैदीन जैसी सूरत बनेगी। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि भाई जैसे अज़ारिबु ज़ैदीन जायज नहीं, इसी तरह अज़ारिबु रजुली ये भी जायज नहीं होना चाहिए जाब्ते के मुताबिक, कियास के मुताबिक, लेकिन यह जायज है अल हसनुल वजही की मुख्तार सूरत पर हमल करते हुए। और फिर आगे एक और मसला जिक्र फरमाया कि जैसे अज़ारिबु ज़ैदीन नहीं जायज, इसी तरह अज़ारिबु का, इसको भी बाज़ नहवी हजरात ने मुजाह मुजाफिले करार दिया है, यह भी जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन वह नहवी हजरात इसको किस पर महमूल करते हैं, ज़ारिबु का पर महमूल करते हैं। तो आप इन तीनों को चाहें तो अलग अलग मसले भी बना सकते हैं, और जब आप अलग मसले बनाएंगे तो फिर भी ज़िमनन इमाम फर्रा के इस्तेदलाल का जवाब हो जाएगा कि इमाम फर्रा इनमें से किसी से इस्तेदलाल नहीं कर सकते क्योंकि इन सब के अंदर हमने जिक्र कर दिया कि एक सूरत में तो तरकीब ज़ईफ है और बाकी दो सूरतों में वो अपनी नजीरों पर महमूल होने की वजह से जायज हैं, वरना वो वैसे जायज न होते, जबकि अज़ारिबु ज़ैदीन उसकी नजीरों जैसा नहीं, लिहाजा उसको महमूल नहीं कर सकते। तो ज़िमनन इमाम फर्रा पर भी रद्द हो गया, लेकिन अलग अलग मसले भी आप बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वला युजाफु मौसूफुन इला सिफतिहि मा बका इल मानल मुफादि बि तरकीबिल वस्फी बि हालिहि। भाई यूं करें, पहले सिर्फ मतन मतन पे जरा नजर रखें। कहते हैं वला युजाफु मौसूफुन इला सिफतिहि वला सिफतुन इला मौसूफिहा ومثل مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول ومثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب متأول. متن مل گیا سارا بھائی؟ جی
جی.
ہاں پھر دیکھ لیں ایک دفعہ، پھر دیکھ لیں متن، ذرا دور دور ہے، ایک دو صفوں میں آ رہا ہے. ولا یضاف موصوف الى صفته ولا صفة الى موصوفها ومثل مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الاولى وبقلة الحمقاء متأول ومثل جرد قطيفة واخلاق ثياب متأول. مل گئی عبارت ساری؟ آپ دیکھو پہلے ذرا یہ متن سمجھ لو. صاحب کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ ولا یضاف موصوف الى صفته، کہ موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت نہیں کی جاتی. ایک ہوتا ہے موصوف، آگے اس کی آ رہی ہے صفت، آپ موصوف کی اضافت کرنا چاہتے ہیں صفت کی طرف، کہتے ہیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں کی جا سکتی، یہ جائز نہیں ہے. ولا صفت الى موصوفها، اور نہ ہی صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی جا سکتی ہے. بھئی دیکھو پہلا ضابطہ یہ ہے، ایک آیا موصوف، ایک ہے صفت. موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے. اب آپ اس موصوف صفت والی ترکیب میں رد و بدل کرتے ہیں اور موصوف کی صفت کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے آیا موصوف، بعد میں آئی صفت، اب آپ اس صفت کی اضافت کرنا چاہتے ہیں کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. تو آپ صفت کو اٹھا کر شروع میں لے آتے ہیں اور پھر اس صفت کی اضافت کر دیتے ہیں موصوف کی طرف، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں ولا یضاف موصوف الى صفته، نہ تو موصوف کی اضافت کی جاتی ہے صفت کی طرف، ولا صفت الى موصوفها، اور نہ صفت کی اضافت کی جاتی ہے اپنے موصوف کی طرف. جبکہ کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں، توجہ سے، کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں کہ موصوف کی اضافت اپنی صفت کی طرف بھی جائز ہے اور صفت کی اضافت بھی اپنے موصوف کی طرف جائز ہے. موصوف کی اضافت صفت کی طرف اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف، یہ بھی جائز ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے، المسجد الجامع، المسجد موصوف اور الجامع اس کی صفت، المسجد الجامع وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے، یعنی جس میں لوگ سارے جمع ہوتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز وغیرہ اس میں ادا کی جاتی ہے، یا یوں کہ جو بڑی مسجد ہے. کیا ہے؟ بڑی مسجد ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرنے والی ہے، اس میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ المسجد موصوف ہے، معرف باللام ہے، اور الجامع یہ بھی معرف باللام ہے، یہ اس کی صفت ہے. لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اس کے اندر المسجد جو ہے موصوف جو ہے اس کی صفت کی طرف اضافت کر دیتے ہیں. کیسے؟ المسجد سے الف لام ہٹا دیا تو یہ نکرہ بن گیا، اور پھر اس کی اضافت کر دی الجامع کی طرف. تو وہ المسجد الجامع میں الف لام کے بغیر یوں کہتے ہیں، مسجد پہلے کیا تھا؟ المسجد الجامع جو موصوف کا اعراب، وہی صفت کا اعراب، لیکن اب دیکھو اضافت کریں گے، الف لام شروع سے مضاف سے ختم کریں گے، مسجد الجامع. ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ المسجد الجامع کے اندر کیا کہہ دیتے ہیں؟ مسجد الجامع. جب مسجد الجامع کہا تو یہ آپس میں مضاف مضافلے ہو گئے. اور اسی طرح ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف کر دیتے ہیں، جیسے سیاب اخلاق، سیاب جمع ہے ثوب کی، کپڑے، اور اخلاق جمع ہے خلق کی. یاد رکھو ایک ہے خلق، خلق لام ساکن ہے، خلق بمانے مخلوق کے ہے، اور اگر لام پر آپ فتحہ پڑھیں خلق، تو خلق کا معنی ہے پرانا. خلق کا کیا معنی؟ پرانا. تو اس خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو سیابن موصوف ہے اور اخلاقن اس کی صفت ہے. سیابن اخلاقن، ایسے کپڑے جو پرانے ہیں. سیابن اخلاقن، سیابن موصوف، اخلاقن اس کی صفت. تو یہ آپس میں موصوف صفت ہیں، لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ یہ اخلاق کی اضافت کر دیتے ہیں سیاب کی طرف، یعنی اخلاق کو اٹھا کر شروع میں لے آئے. कहां ले आए, क्योंकि मुजाफ मुजाफ बनाना है हमने, और मुजाफ पहले आता है और मुजाफिल है बाद में, तो सिफत को मौसूफ पर मुकदम कर देते हैं और इजाफत कर देते हैं, और फिर यूं पढ़ते हैं अखलाकु सियाबिन। असल में तो क्या था, सियाबुन अखलाकुन, सियाब मौसूफ, अखलाक उसकी सिफत, फिर इस सिफत को मौसूफ पर मुकदम करके मौसूफ की तरफ इसकी इजाफत कर दी, तो अखलाकु सियाबिन कहते हैं। और माना दोनों में एक ही रहता है, यानी इजाफत से जो पहले माना था, यानी अखलाकुन सियाबुन क्या माना था, पुराने कपड़े, और अखलाकु सियाबिन के अंदर भी वही माना है, पुराने कपड़े। तवज्जो है, साहिब काफिया ने तो क्या बतलाया कि ना मौसूफ की इजाफत जायज है सिफत की तरफ, और ना सिफत की इजाफत जायज है मौसूफ की तरफ, लेकिन कूफा वाले नहवी कहते हैं कि सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ जायज और मौसूफ की इजाफत भी सिफत की तरफ जायज। हमने अरबों से सुना है, पहला जाब्ता आपने क्या बताया कि मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ नहीं जायज, अल मस्जिदुल जामिउ, ये मस्जिद मौसूफ है और अल जामिउ उसकी सिफत, लेकिन हम अरबों से सुनते हैं वो इजाफत कर देते हैं और यूं कहते हैं मस्जिदुल जामिउ, और माना वही रहता है। अल मस्जिदुल जामे का क्या माना, वो मस्जिद जो जमा करने वाली है, और मस्जिदुल जामे इजाफत के बाद भी वही माना है, वो मस्जिद जो जमा करने वाली है, इजाफत के बाद भी वही माना है। देखो माना नहीं बदलेगा, तो मौसूफ की इजाफत किसकी तरफ कर रहे हैं, सिफत की तरफ। और नीज दूसरा जाब्ता आपने क्या बताया कि सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ नहीं जायज, हमने अरबों से सुना है कि वो सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ कर देते हैं, जैसे सियाबुन अखलाकुन, ये मौसूफ सिफत है, लेकिन फिर अखलाक को उठाकर मौसूफ पर मुकदम कर दिया और इजाफत कर दी, तो अखलाकु सियाबिन हो गया, और माना वही है जो पहले था। भाई बात समझ में आ रही है। और नीज वो कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये इजाफत मानवी है, आपने पढ़ा है इजाफत दो किस्म की है, एक इजाफत लफ्जी, एक इजाफत मानवी। इजाफत लफ्जी जिसमें सीगा सिफत का होता है और मुजाफ होता है अपने मामूल की तरफ, और ये जो इजाफत लफ्जी है ये सिर्फ तख़फीफ का फायदा देती है, ये तारीफ या तख़सीस का फायदा नहीं देती, जबकि दूसरी इजाफत मानवी है। इजाफत मानवी के अंदर तख़फीफ भी आती है और उसके साथ साथ तारीफ या तख़सीस भी आ जाती है, तारीफ या, और वही चूंकि मकसूद होता है लिहाजा उसी को ज्यादातर जिक्र करते हैं कि इजाफत मानवी तारीफ या तख़सीस का फायदा देती है, अगरचे वहां तख़फीफ भी आती है। और यहां भी ये जो इजाफत की गई, कहते हैं ये इजाफत मानवी है, और इजाफत मानवी किस चीज का फायदा देती है, तख़फीफ का भी और तारीफ या तख़सीस का भी, और यहां पर ये दोनों फायदे मौजूद हैं। देखो मस्जिदुल जामिई, देखो मस्जिद से क्या गिर गई, तनवीन गिर गई, जब अलिफ लाम नहीं है तो इस पर क्या आनी थी, तनवीन, लेकिन इजाफत की वजह से वो तनवीन गिर गई तो तख़फीफ भी आ गई और नीज तारीफ भी आ गई, क्योंकि मस्जिद है नकेरा और अल जामिया क्या है, मारिफा, और नकेरा की इजाफत जब मारिफा की तरफ करो तो वो नकेरा क्या बन जाता है, वो मुजाफ भी मारिफा बन जाता है, जैसे गुलाम उजैदीन, गुलाम तो नकेरा है लेकिन जैद मारिफा की तरफ इजाफत की तो गुलाम भी क्या बन गया, मारिफा और मुतायन हो गया। तो यहां पर भी मस्जिदुल जामिया, मस्जिद की जब इजाफत की तो मस्जिद से तनवीन गिर गई, तख़फीफ आ गई, और नीस मस्जिद ने अल जामिया से तारीफ भी अखज कर ली तो तारीफ भी आ गई और तख़फीफ भी आ गई। बात समझ में आ गई। इसी तरह जो दूसरी मिसाल जिक्र की, सियाबुन अखलाकुन, सियाब मौसूफ था, अखलाकुन उसकी सिफत, फिर उस सिफत को मुकदम करके उसकी इजाफत कर दी मौसूफ की तरफ, तो क्या बन गया, अखलाकु सियाबिन, तो देखो अखलाक से तनवीन गिर गई तो तख़फीफ आ गई, और नीस अखलाक भी नकेरा और सियाब भी नकेरा, और नकेरा की नकेरा की तरफ इजाफत हो तो वो तख़सीस का फायदा देती है, तो यहां भी तख़सीस आ गई कि अखलाक, अखलाक का क्या माना, पुराना, पुरानी कोई भी चीज हो सकती थी, पुरानी कोई भी चीज हो सकती थी, लेकिन जब सियाब की तरफ इजाफत कर दी तो अब पता चला कि इस अखलाक से हर चीज मुराद नहीं बल्कि पुराने कपड़े मुराद हैं। जैसे देखो गुलामु रजुलिन, गुलामु रजुलिन, गुलाम दुनिया के हर गुलाम पर सादिक आता है, चाहे मर्द का गुलाम हो चाहे औरत का, लेकिन आप इसकी नकेरा की तरफ इजाफत कर दें गुलामु रजुलिन, मर्द का गुलाम, अब ये सिर्फ मर्दों के गुलाम पर सादिक आएगा, औरतों के गुलाम पर नहीं, तो देखो तख़सीस आ गई। तो यहां पर भी अखलाकु सियाबिन, अखलाक, अखलाक अकेला ले आए, तो ये हर पुरानी चीज पर आप बोल सकते हैं, चाहे कपड़े हो या कपड़ों के अलावा कोई और चीज हो, लेकिन जब सियाब की तरफ इजाफत कर दी अखलाक सियाबीन, अब सिर्फ ये पुराने कपड़ों पर बोला जाएगा और पुरानी चीजों पर नहीं बोला जाएगा, तो देखो तख्सीस आ गई, तो तख्फीफ भी आ गई, अखलाक से तनवीन गिर गई और नीज तख्सीस भी आ गई, और इजाफत मानविया भी तख़फ़ीफ़ के साथ या तारीफ का फायदा देती है या तख़सीस का, दोनों में से एक फायदा देती है। मारिफा की तरफ इजाफत हो तो तारीफ का फायदा देगी, नकिरा की तरफ इजाफत हो तो तख़सीस का फायदा देगी। तो यहां मस्जिदुल जामिअ इसके अंदर तारीफ आ गई और अखलाकुस सियाबिन इसके अंदर तख़सीस आ गई और दोनों के अंदर तख़फ़ीफ़ भी आ गई कि तनवीन गिर गई मुज़ाफ़ से। बात समझ में आ गई है किसका मज़हब बयान हो रहा है? कूफा वालों का। और माना कहते हैं वही रहेगा जो मौसूफ सिफत वाला था, जो माना सियाबुन अखलाकुन का था पुराने कपड़े, अखलाकु सियाबिन का भी वही माना पुराने कपड़े, और जो माना अल मस्जिदुल जामिअ वो मस्जिद जो जमा करने वाली है, तो मस्जिदुल जामिअ इजाफत की सूरत में भी वही माना है वो मस्जिद जो जमा करने वाली है। अब फिर किताब पर देखिए तो साहिब काफिया ने दो जाब्ते जिक्र फरमाए। पहला जाब्ता क्या? वला युजाफु मौसूफुन इला सिफतिही, कि मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ नहीं की जा सकती। वला सिफतुन इला मौसूफिहा, और न सिफत की इजाफत की जा सकती है मौसूफ की तरफ। लेकिन साहिब काफिया पर एतराज होता है, क्या एतराज होता है? देखो आगे कहते हैं वह मिसलु मस्जिदुल जामिअ, कि इसके अंदर तो देखो मौसूफ की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? सिफत की तरफ। देखो मस्जिद पर अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम होता तो मौसूफ सिफत होते, क्योंकि मौसूफ सिफत में तारीफ व तनकीर में मुताबकत जरूरी है। मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा, और मौसूफ नकेरा हो तो सिफत भी नकेरा। लेकिन यहां पर देखो मस्जिदुल जामे, मस्जिद पर अलिफ लाम नहीं है, तो देखो अरब से हमने सुना है मस्जिदुल जामे वो कहते हैं, तो इससे तो मालूम हुआ कि कूफा वालों का मजहब सही है कि मौसूफ की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? सिफत की तरफ। इसी तरह अरब कहते हैं, आगे देखिए वजानिबुल गर्बी यानी मगरबी जानिब, मगरबी जानिब, तो इसमें के अंदर भी असल में है अल जानिबुल गर्बी यु, अल जानिब मौसूफ है और गर्बी क्या है? उसकी सिफत है, लेकिन फिर जानिब की इजाफत कर दी गई अल गर्बी की तरफ, जानिब से अलिफ्लाम हटा दिया और इजाफत कर दी, तो क्या बन गया? जानिबुल गर्बी ये, तो इसमें देखो मौसूफ की इजाफत हो रही है सिफत की तरफ, ये भी हमने अरबों से सुना है। वसलातुल उला, असल में था अस्सलातुल उला, अस्सलात अलिफ्लाम के साथ था, ये था मौसूफ और अल उला उसकी सिफत है, सलात मुअन्नस है उसके साथ बोलता है, तो अल उला उसकी सिफत भी क्या लाई गई? मुअन्नस लाई गई, तो ये आपस में मौसूफ सिफत हैं, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि वो इसके अंदर सलातुल उला भी कहते हैं, सलात से अलिफ्लाम खत्म करके अल उला की तरफ इसकी इजाफत कर देते हैं। सलातुल उला यानी पहली नमाज, क्या माना? पहली नमाज। वह इसी तरह वह बकलतुल हमकाई, असल में है अल बकलतुल हमकाऊ, अल बकला मौसूफ है और अलहमका उसकी सिफत है, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि वो मौसूफ से यहां अलिफ्लाम खत्म करके उसकी इजाफत कर देते हैं और यूं पढ़ते हैं बकलतुल हमकाई। तो ए साहिब काफिया, आपने तो हमें जाब्ता बतलाया था कि मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ नहीं होती, लेकिन इन तमाम मिसालों में हम देख रहे हैं कि मौसूफ की इजाफत की गई है सिफत की तरफ, तो साहिब काफिया उसका जवाब देते हैं। आगे देखिए फरमाते हैं मुताअव्वलुन, फिर देखो इबारत व मिसलु मस्जिदुल जामिअ व जानिबुल गर्बी व सलातुल उला व बकलतुल हमकाई मुताअव्वलुन, कि ये सारी इस जैसी मिसालें जो हैं उनमें तावील की गई है, इनमें क्या की गई है? तावील की गई है। इसी तरह आगे इबारत देखिए व मिसलु जर्दु कतीफतिन व अखलाकु सियाबिन मुताअव्वलुन, दूसरा जाब्ता क्या जिक्र किया था साहिब काफिया ने कि सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ नहीं करते, लेकिन हां ऐ साहिब काफिया हमने अरबों से सुना है कि वो जर्दु कतीफतिन कहते हैं, और ये असल में था कतीफतुन जर्दुन, ये असल में क्या था? कतीफतुन जर्दुन, याद रखो कतीफा काफ दो नुकतों वाला है तो है कतीफतुन, तो कतीफा जो है ये याद रखो मखमली चादर को कहते हैं, किसको कहते हैं? मखमली चादर भाई, मखमली चादर, मखमली कपड़ा जानते हो भाई? भाई वो कपड़ा जिस पर बारीक से बाल होते हैं, ये तकियों वगैरह पर चढ़ाया जाता है और बारीक से बाल होते हैं, ये है मखमली कपड़ा। तो ये जो मखमली कपड़ा है, याद रखो, जब ये पुराना हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल उतरते चले जाते हैं। तो ये जो बेबाल मखमली चादर है, इसको कहते हैं कतीफतुन जर्दुन। जर्दुन का माना बगैर बालों के, यानी जिसके बाल घिस गए हैं, उतर गए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कतीफतुन जर्दुन। तो ये जो चादर है मखमली चादर, जिसके बाल उतर गए हैं, घिस गए हैं, इसको क्या कहते हैं? कतीफतुन जर्दुन। कतीफा मौसूफ, इसका माना मखमली चादर, और जर्दुन का माना बगैर बालों के, यानी जिसके बाल घिस गए हैं। तो कतीफतुन जर्दुन, कतीफा है मौसूफ और जर्दुन है उसकी सिफत। और फिर हमने अरबों से सुना है वो इस जर्दुन की इजाफत करते हैं कतीफा की तरफ, जर्द जो सिफत है उसको उठाकर मौसूफ पर मुकदम कर देते हैं और यूं कहते हैं जर्दु कतीफतिन। और ऐसा ही बेकाफी, आपने तो हमें क्या बताया था, सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ नहीं होती, लेकिन हमने सुना है अरबों से जर्दु कतीफतिन वो कहते हैं। इसी तरह सियाबुन अखलाकुन, सियाब मौसूफ है और अखलाकुन उसकी सिफत, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि वो अखलाक जो सिफत है उसको उठाकर मौसूफ पर मुकदम कर देते हैं और इजाफत करके कहते हैं अखलाकु सियाबिन। तो आपके दूसरा जाब्ता भी टूट गया। तो साहिबे काफिया उसका भी जवाब दे रहे हैं और फरमाते हैं वह मिसलु जर्दु कतीफतिन व अखलाकु सियाबिन, और जर्दु कतीफतिन और अखलाकु सियाबिन जैसी मिसालें जिनमें सिफत की इजाफत किसकी तरफ लग रही है? मौसूफ की तरफ। मुतअव्वलुन, इनमें तावील की गई है, इनमें तावील की गई है। तो अब मस्जिदुल जामिअ और जानिबुल गर्बी वगैरह में क्या तावील की गई है और जर्दु कतीफतिन और अखलाकु सियाबिन में क्या तावील की गई है वो समझ लें। साहिबे काफिया जवाब देंगे, सुनो भाई जवाब। वो फरमाते हैं कि एक तरकीब है मौसूफ सिफत वाली और एक तरकीब है इजाफत वाली। जो मौसूफ सिफत वाली तरकीब है, यानी तरकीब तौसीफी जो है, वो और है, उसका फायदा और है, उसका माना और है, और तरकीब इजाफी और है और उसका माना और है। लिहाजा तरकीब तौसीफी को बदल दें तरकीब इजाफी से और माना वही तरकीब तौसीफी वाला रहे, यह नहीं हो सकता। तरकीब तौसीफी जिसमें एक मौसूफ आता है और एक सिफत, याद रखो मौसूफ सिफत जो है यह तरकीब फायदा देती है कि मौसूफ इस सिफत के साथ मुत्तसिफ हो रहा है, मौसूफ इस सिफत के साथ मुत्तसिफ हो रहा है। मसलन मैं आपसे कहता हूं जाअनी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया, एक ऐसा आदमी आया आलिमुन, जो आलिम था। तो रजुलुन मौसूफ, नकेरा है रजुलुन मौसूफ और आलिमुन उसके सिफत, और यह रजुल आलिम होने के साथ मौसूफ है कि यह रजुल आलिम है। तो तरकीब तौसीफी किस चीज का फायदा देती है कि एक चीज दूसरी चीज के साथ मौसूफ हो रही है। जैसे मैं कहता हूं जैदुनिल आलिमो, जैदुन मौसूफ और अल आलिमो उसकी सिफत, तो इस तरकीब से क्या पता चला कि ये जो जैद है ये आलिम होने के साथ मौसूफ है। तो तरकीब तौसीफी किस चीज का फायदा देती है? इत्तेसाफ शैइन बिशैइन, जुबान से दोहराएं, तरकीब तौसीफी किस चीज का फायदा देती है? इत्तेसाफ उशय इन विषय इनके, एक चीज दूसरी चीज के साथ मुत्तसिफ हो रही है, मौसूफ हो रही है। और जबकि तरकीब इजाफी जो है वो फायदा देती है कि एक चीज की इजाफत और निस्बत की जा रही है दूसरी चीज की तरफ। गुलाम जैदीन, गुलाम मुजाफ और जैदीन मुजाफिल है, यहां गुलाम जैद के साथ कोई मौसूफ नहीं हो रहा बल्कि गुलाम की निस्बत की जा रही है किसकी तरफ? जैद की तरफ, कि ये किसी और का गुलाम नहीं है बल्कि किसका गुलाम है? जैद का गुलाम है। तो तरकीब इजाफी किस चीज का फायदा देती है? निस्बत का, कि एक चीज की निस्बत की जा रही है दूसरी चीज की तरफ। और जबकि तरकीब तौसीफी किस चीज का फायदा देती है? कि एक चीज मुत्तसिफ हो रही है दूसरी चीज के साथ, यानी इत्तेसाफ शैइन बिशैइन। और तो ये तरकीब तौसीफी फायदा देती है, और तरकीब इजाफी वो इजाफत शैइन इला शैइन, कि एक चीज की इजाफत और निस्बत की जा रही है दूसरी चीज की तरफ। तो दोनों का फायदा बिल्कुल अलग अलग है, तरकीब तौसीफी का फायदा बिल्कुल अलग और तरकीब इजाफी का फायदा बिल्कुल अलग। लिहाजा अल मस्जिदुल जामिया, जब मौसूफ सिफत हैं और फिर आप इजाफत भी कर दें और यूं कहें मस्जिदुल जामिया और कहें माना वही है, नहीं माना वही नहीं है, वही माना नहीं है। अल मस्जिदुल जामे वो तरकीब और मस्जिदुल जामिया ये तरकीब और है। बात समझ में आ रही है, ये वही मौसूफ नहीं है। अल मस्जिदुल जामिया उसमें तो अल मस्जिद मौसूफ है, अल जामिया उसकी सिफत है, लेकिन मस्जिदुल जामिया इसके अंदर जब आपस में मुजाह मुजाफिले बन गए तो इसमें तावील की गई है। मस्जिद को हम मौसूफ नहीं बनाएंगे और अल जामिया को उसके लिए सिफत नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या तावील है? कहते हैं यहां तावील यह है कि यूं कहो मस्जिदुल वक्तिल जामिया, यहां वक्त का लफ्ज जो है मुकद्दर है। तो मस्जिदुल जामे असल में क्या है? मस्जिदुल वक्तिल जामिया। फिर दोहराओ मस्जिदुल वक्तिल जामिया। आप क्या कह रहे थे कि मस्जिद मौसूफ है, अलजामे सिफत है और मौसूफ की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? सिफत की तरफ। कहते हैं नहीं, ये मस्जिद की इजाफत अलजामे की तरफ नहीं हो रही, यहां अल वक्त का लफ्ज मुकद्दर है तो मस्जिद की इजाफत अल वक्त की तरफ हो रही है। और नीज आपने क्या कहा था, यह अलजामे मस्जिद की सिफत है? नहीं, ये अल वक्त की सिफत है। मस्जिदुल वक्तिल जामिया, अल वक्त पर भी अलिफ लाम और अल जामिया पर भी अलिफ लाम, तो अल वक्त मौसूफ, अल जामे उसकी सिफत। तो ये अल जामे मस्जिद की सिफत नहीं है बल्कि किसकी सिफत है? अल वक्त की सिफत है। और नीज ये अल जामे मस्जिद के लिए मुजाफिले नहीं है बल्कि मुजाफिले अल वक्त यहां मुकद्दर है। वो क्या है यहां पर? मुकद्दर है। तो इबारत गोया यूं है मस्जिदुल वक्तिल जामिया, वो वक्त जो जमा करने वाला है लोगों को उसकी मस्जिद, वो वक्त जो लोगों को जमा करने वाला है उसकी मस्जिद, यानी मुराद है जुम्मे का दिन। वो वक्त जो लोगों को जमा करने वाला है वो कौन सा वक्त है? जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन तमाम लोग जमा होते हैं जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए। बात समझ में आ रही है? जैसे पहले था, अब तो हर मस्जिद के अंदर तकरीबन जुमा होता है। पहले तो जुमा शहर से बाहर इकट्ठे अदा करते थे, या फिर बाद में बड़ी मस्जिद के अंदर जुमा होता था, हर मस्जिद के अंदर जुमा नहीं होता था। तो जो बड़ी मस्जिद है वो क्या है? मस्जिदुल वक्तिल जामिया, के वो वक्त जो लोगों को जमा करने वाला है उसकी मस्जिद, यानी जुमे की नमाज की जो मस्जिद है वो मुराद है। तो इश्काल क्या था, फिर दोहराएं, इश्काल यह था कि आपने क्या कहा था, मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ जायज नहीं, और हमने दिखाया स्कूफा वाले कहते हैं कि मौसूफ मस्जिद की इजाफत हो रही है अलजामे सिफत की तरफ। साहिब काफिया फरमाते हैं नहीं, न मस्जिद मौसूफ है न अलजामे उसकी सिफत है, और यह मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ नहीं हो रही बल्कि यहां अलवक्त का लफ्ज मुकद्दर है। और तकदीर इबारत क्यों है मस्जिदुल वक्त अलजामे, तो मस्जिद की इजाफत अलजामे की तरफ हुई या अलवक्त की तरफ हुई? अलवक्त की तरफ। और अलवक्त तो मस्जिद की सिफत नहीं है, और नीज अलजामे यह मस्जिद की सिफत भी नहीं है, तो मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ यहां नहीं है भाई। और नीस व जानिबुल गर्बी, इसके अंदर अल मकान का लफ्ज मुकद्दर है। जानिबुल मकान इल गर्बी, ये मगरबी जानिब, जो जगह, मकान का माना जगह, मगरबी जगह की जानिब, मगरबी जगह की जानिब। तो यहां पर भी जानिब की इजाफत किसकी तरफ है? गर्बी की तरफ नहीं है, अल मकान की तरफ है। और अल गर्बी वो जानिब की सिफत नहीं है बल्कि वो अल मकान की सिफत है। बात समझ में आ गई? इसी तरह सलातुल उला, ये असल में है सलातुस साअतिल उला, तो सलात की इजाफत अल उला की तरफ नहीं हो रही बल्कि किसकी तरफ हो रही है? अस साअत की तरफ हो रही है। और अल उला सलात की सिफत नहीं है बल्कि अस साअत की सिफत है। साअत का माना घड़ी, सलातुस साअतिल उला, पहली घड़ी की नमाज, पहले घड़ी की, पहले घंटे की नमाज, यानी पहली घड़ी की नमाज। मुराद यह है कि जवाल के बाद पहली घड़ी की नमाज, यानी जोहर की नमाज मुराद है। जवाल के बाद सलातुल उला, क्या माना? सलातुस साअतिल उला, पहली घड़ी की नमाज, यानी सूरज के जवाल के बाद पहली घड़ी की जो नमाज है वो कौन सी है? जोहर की नमाज है, वो मुराद है। या माना यह है सलातुस साअतिल उला, हर वो बाजमात नमाज जो पहली घड़ी में अदा की जाती है, हर वो बाजमात नमाज जो, भाई देखो ना, जब जोहर का वक्त होता है तो जोहर के वक्त जो बाजमात नमाज अदा की जाती है यह क्या है? सलातुस साअतिल उला। असर का वक्त आया तो कौन सी नमाज अदा की? तो असर की नमाज अदा की। तो ये क्या है? सलातुस साअतिल उला, असर के अंदर पहली घड़ी के अंदर फर्ज नमाज जो अदा की जा रही है। तो गोया हर फर्ज नमाज मुराद हो गई इससे। وَبَقْلَةُ الْحَمْقَائِ، بَقْلَةُ الْحَمْقَا یہ اصل میں ہے بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا، بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا، بَقْلَةُ کا معنی ہے سبزی اور ترکاری، بَقْلَةُ کا کیا معنی؟ سبزی اور ترکاری، اور یہاں الْحَبَّة کا لفظ مقدر ہے بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا، اور الْحَبَّة کہتے ہیں دانے کو یعنی بیج بیج، بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا، اور حمقا یہ مؤنس ہے احمق کی، حمقا مؤنث ہے احمق کی، جیسے احمر، احمر کی مؤنث کیا؟ حمرا، ابیض کی مؤنث کیا؟ بیضا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ احمر ابیض یہ کون سا صیغہ ہے، یاد رکھو احمر اور ابیض وغیرہ عموماً طلبا فوراً کہتے ہیں یہ اس میں تفضیل ہے، وافعل تفضیل المذکر منہ ازرب، دیکھو ازرب ابیض احمر، تو طلبا کو اشتباہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس میں تفضیل ہے، لیکن نہیں، یاد رکھو یہ جو رنگوں کے نام ہیں یہ سب صفت مشبہ ہیں، یہ افعل وزن یاد رکھو اس میں تفضیل میں بھی آتا ہے اور صفت مشبہ میں بھی آتا ہے، تو اس کو افعل صفتی کہتے ہیں، وہ افعلو اس میں تفضیل والا ہے ایک، اور یہ افعلو وزن کس کا ہے؟ صفت والا ہے، تو اس کو افعلو صفتی کہتے ہیں، تو یہ احمر اور ابیض، ابیض کا کیا معنی؟ سفید، اگر یہ اس میں تفضیل ہوتا پھر تو معنی ہوتا زیادہ سفید، حالانکہ اس کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید ہے، معلوم ہوا یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ ہے، اور نیز اس میں تفضیل اگر ہوتا، اس میں تفضیل کی تو مؤنث کیا آتی ہے؟ وفعل تفضیل المذکر منہ ازرب والجمع ازارب والمؤنث منہ زربا، اس میں تفضیل کی مؤنث تو زربا آتی ہے، جبکہ افعل صفتی کی مؤنث فعلا وزن آتی ہے، تو دیکھو احمق یہ بھی یاد رکھو صفت مشبہ ہے، یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ، اور اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمقا، جیسے ابیض کا معنی سفید اور مؤنث کیا آئے گی؟ بیضا، تو یہ اصل میں ہے بقلت الحبت الحمقا، تو یہ بقلہ کی اضافت حمقا کی طرف نہیں ہو رہی، الحبہ کی طرف ہو رہی ہے، اور نیز الحمقا یہ بقلہ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ الحبہ کی صفت ہے، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور معنی کیا ہے؟ بقلت الحبت الحمقا، حماقت والے بیج کی سبزی، حماقت والے بیج کی سبزی، بھئی یہ بس نام ہے، کہتے ہیں یہ کوئی سبزی ہے، لغت میں اس کا نام لکھا ہوا ہے خرفے کا ساگ، خرفے کا ساگ، جیسے ساگ ہوتا ہے اسی طرح یہ کوئی سبزی ہوگی اور اس کو پکایا جاتا ہے، لیکن اس کا نام بقلت الحمقا ہے، تو اس کے نام بقلت الحمقا ہے، اور یہ نام کیوں اس کا پڑا؟ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں سیلاب بہتا ہے یہ وہاں اگتی ہے، کہاں اگتی ہے؟ جہاں سیلاب آتا ہے، آپ جانتے ہیں پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ سارا پانی اکٹھا ہو کر پہاڑوں سے نکلتا ہے اور جس طرف کا رخ کرتا ہے تباہی مچا دیتا ہے، تو یہ ہے سیلاب کا پانی بھائی، اور یہ پانی جہاں سے گزرتا ہے یہ سبزی اس جگہ اگتی ہے، اور نیز کہتے ہیں یہ قدموں کی جگہ میں اگتی ہے یعنی راستے وغیرہ کے اندر اگتی ہے، تو دیکھو یوں کہو احمق سبزی ہے، کس جگہ اگتی ہے؟ سیلاب والی جگہوں میں اور قدموں والی جگہوں میں جہاں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، قدموں تلے رون دی جائے گی یا جب بھی بارش کا پانی آئے گا اس کو بہا کر لے جائے گا، تو اس لیے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ بقلت الحمقا پڑ گیا بھائی، تو تاویلیں سمجھ میں آ گئی، اعتراض کیا ہوتا تھا کہ یہ موصوف کی اضافت ہے صفت کی طرف، بتلایا کہ نہیں یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہے بلکہ یہاں لفظ مقدر ہے اور اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اور جو صفت بھی ہے وہ جو مضاف ہے اس کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ جو مقدر ہے یہ سب اس کی صفات ہیں، مسجد الوقت الجامع یہ جامع وقت کی صفت ہے، جانب المکان الغربی یہ غربی مکان کی صفت ہے، صلاۃ الساعۃ الاولى یہ اولا الساعہ کی صفت ہے، اور بقلۃ الحبۃ الحمقاء یہ حمقاء حبہ کی صفت ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو ان میں یہ تاویل کی گئی ہے، جبکہ یہ دوسرا ضابطے پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے کہا صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف نہیں کی جاتی، تو حالانکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ قطیفتن جردن، قطیفتن موصوف جردن اس کی صفت، لیکن اس کے اندر عرب کہہ دیتے ہیں جرد قطیفتن، اور سیابن اخلاقن, سیابن موصوف اخلاقن اس کی صفت, لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اخلاق سیابن کہہ دیتے ہیں. معلوم ہے صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز ہے, تو آپ کے ضابطے پر اعتراض ہوتا ہے. تو صاحب کافیہ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی تاویل کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ تاویل کی گئی ہے. کس طرح تاویل کی گئی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں بھائی. بھائی دیکھیے اصل میں تھا قطیفتن جردن, توجہ ہے, قطیفہ موصوف تھا, جردن اس کی صفت, پھر اس قطیفہ کو حذف کر لیا تو کیا رہ گیا؟ جردن. اور جردن کا کیا معنی؟ پرانی, اور پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تو لہذا پھر اس کی اضافت کر دی قطیفہ کی طرف. یہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے خاتم, خاتم کا کیا معنی؟ انگوٹھی. انگوٹھی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, لوہے کی بھی ہو سکتی ہے, سونے کی بھی ہو سکتی ہے, چاندی کی بھی ہو سکتی ہے, پیتل کی بھی ہو سکتی ہے, تو صرف خاتم کہیں تو پتہ نہیں چلے گا. پھر آگے جب فضہ کی طرف اضافت کر دیں خاتم فضتن, تو خاتم کی جنس کا پتہ چل گیا کہ انگوٹھی کس جنس کی ہے؟ چاندی کی ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا, قطیفتن جردن تھا پہلے, پھر قطیفہ کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا, اور یوں کو جرد کو اسم بنا لیا. کیا بنا لیا؟ اسم, یعنی جس کا معنی ہے پرانا. یاد رکھو ایک ہوتی ہے صفت, ایک ہے اسم محض. صفت وہ ہے جس کے لیے ہمیشہ موصوف ضرور چاہیے, صفت کے لیے ہمیشہ جیسے جرد, جرد کا معنی پرانی, تو پرانی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, تو صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ موصوف ضرور چاہیے. تو یہاں پر بھی قطیفتن موصوف تھا اور جردن اس کی صفت, پھر قطیفہ کو حذف کر لیا گیا اور جردن رہ گیا, اور جرد تو کیا تھی؟ صفت تھی, پھر اس کو اسم بنا دیا. تو اس کو اسم بنا دیا, اس کو کیا بنا دیا؟ اسم. یعنی اب اس کے لیے یوں سمجھو اب اس کے لیے موصوف کی ضرورت ہی نہ رہی. پہلے قطیفتن جردن تھا, جردن صفت تھی اور قطیفہ موصوف تھا, اور صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ موصوف چاہیے, چاہے لفظوں میں ہو چاہے مقدر ہو, موصوف ضرور چاہیے. جیسے میں کہوں بہادر, بہادر کون ہے؟ کوئی نہ کوئی موصوف ضرور چاہیے, یا تو لفظوں میں ذکر ہوگا یا مقدر ہوگا. تو قطیفتن جردن, قطیفہ تھا موصوف, جردن تھی اس کی صفت, پھر قطیفہ کو حذف کر دیا گیا اور جردن کو اسم بنا دیا. اسم بنانے کا مطلب یہ ہے اب اس کے لیے کسی موصوف کی ضرورت نہیں, یہ صفت نہ رہا بلکہ کیا بنا دیا؟ اسم بنا دیا. مانا وہی ہے پرانا, لیکن یوں کہو اب اس کے لیے کسی موصوف کی ضرورت نہیں. تو پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, جیسے خاتم کا مانا انگوٹھی, انگوٹھی تو کسی بھی جنس کی ہو سکتی ہے, تو پرانی چیز بھی کسی بھی جنس کی ہو سکتی ہے. تو اس کی جنس کا پتہ نہیں چل رہا تھا, تو پھر اس کی اضافت کر دی قطیفہ کی طرف, جرد قطیفتن, جیسے خاتم فضتن. خاتم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس جنس کی ہے, فضہ کی طرف اضافت کی تو پتہ چلا یہ خاتم کی جنس کیا ہے, یہ کس سے بنی ہے؟ چاندی سے بنی ہے. خاتم فضتن, چاندی کی انگوٹھی. بات سمجھ میں آگئی؟ بالکل اسی طرح جرد میں بھی کیا گیا. جرد کا معنی تو تھا پرانا, لیکن پتہ نہیں چل رہا اس سے کون سی پرانی چیز ہے, اس کی جنس کا نہیں پتا کہ کپڑے کی جنس سے ہے یا کتابوں کی جنس سے ہے یا قلم کی جنس سے ہے, کیا چیز پرانی ہے. تو پھر آگے قطیفہ کی طرف اضافت کر دی گئی, تو اب پتہ چل گیا کہ پرانی چیز کس جنس سے ہے, مخملی چادر کی جنس سے ہے. جیسے خاتم کا پتہ نہیں چل رہا تھا, فضہ کی طرف اضافت کی تو اس کی جنس کا پتہ چل گیا. پھر سنو, پھر سنو, خاتم و فضتن, خاتم اکیلا ہو تو جنس کا پتہ نہیں, فضا کی طرف اضافت کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ انگوٹھی کی جنس کیا ہے, فضا ہے, یہ بنی کس سے ہے؟ چاندی سے. اسی طرح قطیفتن جردن تھا, قطیفہ موصوف تھا, جردن اس کی صفت, پھر موصوف کو حذف کر لیا, کیا رہ گیا؟ جرد. یہ کیا تھی؟ صفت. اور صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ موصوف. لیکن پھر اس کو اسم بنا دیا, جب اسم بنا دیا اب اس کے لیے موصوف کی ضرورت نہیں. اس کا معنی کیا؟ پرانا, لیکن اس کی جنس کا پتہ نہیں کہ یہ پرانی چیز کس جنس کی ہے. تو اس کے لیے جیسے خاتم میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے اس کی اضافت کس کی طرف کی تھی؟ فضا کی طرف, تو یہاں بھی جرد کی اضافت کس کی طرف کر دی؟ قطیفہ کی طرف, جرد قطیفتن. اب پتا چلا کہ یہ جرد کون سی جنس سے ہے, قطیفہ یعنی مخملی چادر کی جنس سے ہے. تو اس کے اندر تخصیص آ گئی, کیونکہ نکرہ کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ نکرہ کی طرف. نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے, اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. تو گویا یہ جرد, یہ قطیفہ کی صفت ہی نہیں تھی, कतीफा को हमने हजफ करके जर्द को इसम बना दिया, अब यह सिफत है ही नहीं, लेकिन इसकी जिंस में इबहाम था कि पता नहीं इसकी जिंस क्या है, आगे कतीफा की तरफ अब इजाफत करके इसकी जिंस का पता चल गया कि यह जर्द क्या है, कतीफा की जिंस से है, मखमली चादर की जिंस से है, पुरानी चीज। बात समझ में आ गई। इसी तरह सियाबुन अखलाकुन था, सियाबुन मौसूफ था और अखलाकुन उसकी सिफत, और अखलाक का क्या माना, पुराने, तो पुराने कपड़े, फिर सियाबुन को हजफ कर दिया और अखलाकुन रह गया, और अखलाकुन तो सिफत थी और सिफत के लिए हमेशा क्या चाहिए, मौसूफ, लेकिन हमने इसको इसम बना दिया, जब इसम बना दिया अब इसके लिए कोई मौसूफ नहीं चाहिए, किसी मौसूफ की जरूरत नहीं, बस इसका माना है पुराना। भाई पुरानी क्या चीज है, इसकी जिंस का हमें पता नहीं चल रहा, तो जैसे खातम की जिंस का पता नहीं चल रहा था और फिजा की तरफ इजाफत की तो उसकी जिंस का पता चल गया, तो यहां पर भी अखलाक की जिंस का पता नहीं चल रहा कि क्या चीज पुरानी है, तो उसके लिए फिर सियाब की तरफ इजाफत कर दी, अखलाक सियाबिन, पता चला ये अखलाक किस जिंस के हैं, सियाब यानी कपड़ों की जिंस से है, यह पुरानी चीज कपड़ों की जिंस से है, उसके पुराने होने की बात हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हो रही। तो यह माना है वह मिसलु जर्दु कतीफतिन व अखलाकु सियाबिन मुतअव्वलुन, और कहते हैं जर्दु कतीफतिन और अखलाकु सियाबिन जैसी मिसालें जो हैं इनमें तावील की गई है। तावील समझ में आ गई जी। अब आइए सारे को शरा के साथ देखें भाई। देखिए भाई कहते हैं वला युजाफु मौसूफुन इला सिफती ही मा बका इल्मानल मुफादी बितरकीबिल वस्फी ये बिहाली ही, वला युजाफु मौसूफुन इला सिफती ही, और मौसूफ की इजाफत नहीं की जाती इला सिफती ही उसकी सिफत की तरफ मा बका इल्मानल मुफादी। भाई देखिए मैंने आपको क्या बतलाया था, कूफा वाले नहवी क्या कहते हैं, मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ जायज है, और अब इजाफत हो गई है लेकिन माना वही मौसूफ सिफत वाला रहेगा, और सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ जायज है और माना फिर भी वही मौसूफ सिफत वाला रहेगा। तो साहिबे जामी बतला रहे हैं कि वही माना बरकरार रहे ये जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वला युजाफ मौसूफुन इला सिफती ही, और इजाफत नहीं की जाती मौसूफ की अपनी सिफत की तरफ मा बका इल्मानल मुफादी बित तरकीबिल वस्फी भी हाल ही, साथ इसके कि बाकी रहे वो माना जो अल मुफादी जो हासिल हो रहा है बित तरकीबिल वस्फी तरकीब वस्फी से भी हाल ही वो अपने हाल पर हो, मा बका इल्माना भी हाल ही बावजूद इसके कि वो माना अपने हाल पर रहे। तवज्जो है क्या, मौसूफ की इजाफत किसकी तरफ करें, सिफत की तरफ, तो अब तो इजाफत हो गई लेकिन माना वही बाकी रखें जो कौन सा था मौसूफ सिफत वाला, ये जायज नहीं। ये माना है कि मा बका इल्मान अल मुफादी बि तरकीब अल वस्फी ये भी हाल ही, साथ इसके कि वो माना जो तरकीब वस्फी से हासिल हो रहा था वो अपने हाल पर बाकी रहे, लिअन्न लिकुल्लि मिन है अतायित तरकीब अल वस्फी ये वल इजाफी ये मानन आखर, इसलिए क्योंकि हर एक जो है मिन है अतायित तरकीबी, असल में क्या था मिन है अतैनी, दो है अतें, दो सूरतें हैं भाई, कौन सी, एक तरकीब वस्फी है और एक तरकीब इजाफी है, और दोनों का माना अलग अलग है। इधर देखिए मैंने क्या कहा था आपको, तरकीब वस्फी किस चीज का फायदा देती है कि एक चीज दूसरी चीज से मुत्तसिफ हो रही है, और तरकीब इजाफी किस चीज का फायदा देती है कि एक चीज की निस्बत हो रही है दूसरी चीज की तरफ, तो दोनों तरकीबों का फायदा ही अलग अलग है, लिहाजा तरकीब इजाफी आए और आप कहें माना वही तरकीब वस्वी वाला होगा ये जायज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं अन लिकुल्लि मिन है अतायित तरकीबिल वस्फी वल इजाफी मानन आखर, इसलिए क्योंकि हर एक जो है दो है अतों में से, यानी तरकीब वस्फी और तरकीब इजाफी, इन दोनों के लिए मानन आखर, इन दोनों में से हर एक का अलग माना है, ला यकूम अहदुहुमा मकाम अल आखरी, इनमें से एक जो है वो दूसरे के कायम मकाम नहीं हो सकता, वली हाद अल माना भी आईनही, और इसी इल्लत की वजह से भी आईनही, माना का यहां तर्जमा कर ले सबब, वली हाद अल माना भी आईनही, और भी आईनही इसी सबब से इसी वजह से ला तुजाफु सिफतुन इला मौसूफिहा, सिफत की इजाफत भी अपने मौसूफ की तरफ नहीं की जाती, सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ नहीं की जाती कि वही माना वो तरकीब वस्फी वाला माना बरकरार रहे, ऐसा नहीं हो सकता। फला युकालु, बस नहीं कहा जाएगा मस्जिदुल जामिई बिमानल मस्जिदिल जामिई, कि आप मस्जिदुल जामे कहें इजाफत के साथ, और ये किस माना में हो, अल मस्जिदुल जामे के माना में हो, ऐसे आप नहीं कह सकते। तो ये माना है फला युकालु मस्जिदुल जामिई बिमानल मस्जिदिल जामिई, लिहाजा मस्जिदुल जामिई नहीं कह सकते कि वो अल मस्जिदुल जामिई यानी मौसूफ सिफत के माना में हो। फिर सुनो, फला युकालु मस्जिदुल जामे, लिहाजा मस्जिदुल जामे इजाफत के साथ आप नहीं कह सकते बिमानल मस्जिदुल जामे कि वो बमाने मस्जिदुल जामे यानी मौसूफ सिफत के माना में हो। इसी तरह वजर्दु कतीफतिन बिमाने कतीफति जर्दिन, और आप जर्दु कतीफतिन इजाफत के साथ नहीं कह सकते कि ये बमाने कतीफतुन जर्दुन यानी तरकीबे वस्फी के माना के साथ हो, आप ऐसा नहीं कह सकते। खिलाफन लिल कूफियती, बखिलाफ कूफा वालों के, फइन्ना मस्जिद अल जामिई इंदहुम बिमानल मस्जिद अल जामिई, क्योंकि उनके नजदीक मस्जिदुल जामिया जो इजाफत के साथ है वो उनके नजदीक अल मस्जिदुल जामिया यानी मुरक्कबे वस्फी के माना में है, तरकीबे वस्फी के माना में है। वह जर्दु कतीफतिन बिमान कतीफतिन जर्दिन, और इसी तरह उनके नजदीक जर्दु कतीफतिन जो है ये कतीफतुन जर्द के माना में है, मिन गैरी फर्किन बगैर किसी फर्क के, जो माना कतीफतुन जर्द का है वही जर्दु कतीफतिन का भी है वो कहते हैं कूफा वाले। इसी तरह जो माना अल मस्जिदुल जामिया का है वही माना मस्जिदुल जामिया का भी है। वयरिदु अलल काइदतिल उला, और एतराज वारिद होता है साहिबे काफिया के पहले कानून पर। पहला कानून क्या था कि मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ नहीं हो सकती। अब आगे मिसालें जिक्र करेंगे कि ये सारे एतराज होते हैं, क्योंकि हमने तो अरबों से सुना है वो तो मस्जिदुल जामे भी कहते हैं, वो तो जानिबुल गर्बी भी कहते हैं, वो तो सलातुल उला भी कहते हैं, और वो बकलतुल हमका भी कहते हैं। तो कहते हैं वयरिदु अलल काइदतिल उला, और एतराज वारिद होता है साहिब काफिया के पहले कानून पर। वह हुआ कौलुहू, और वो साहिब काफिया का यह कौल है, ला युजाफ मौसूफुन इला सिफती ही, के मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ नहीं हो सकती। इस पर एतराज वारिद होता है मिसलु मस्जिदुल जामिई व जानिबुल गर्बी व सलातुल उला व बकलतुल हमका, इनका एतराज वारिद होता है। फइन फी कुल वाहिदिन मिन हाजिहि तराकीबी, इसलिए कि उनके इन तरकीबों में से हर एक के अंदर उजीफा मौसूफुन इला सिफती ही, इजाफत की गई है मौसूफ की अपनी सिफत की तरफ। फइन अल जामिया सिफतुल मस्जिदी, इसलिए क्योंकि अल जामिया जो है वो मस्जिद की सिफत है भाई। वल गर्बिया सिफतुल जानिबी, इसी तरह जो गर्बी आया जानिबुल गर्बी के अंदर ये अल जानिब की सिफत है और फिर इजाफत कर दी गई। वल उला सिफतुस सलाती, और इसी तरह सलातुल उला के अंदर जो उला आ रहा है वह सिफत है सलात की। वल हमका सिफतुल बकलती, और इसी तरह बकलतुल हमका के अंदर जो अल हमका आ रहा है सिफतुल बकलती, वो असल में क्या है, बकला की सिफत है। वकद उजीफ इलैहा मौसूफातुहा, और तहकीक इन सिफतों की तरफ इजाफत की गई है इनके मौसूफों की। तो ये एतराज वारिद होता है। वह उजीबा, और जवाब दिया गया है भी अन्ना मिसला हादी ही तराकीब मुतअव्वलुन, कि इस जैसी जो तरकीबें हैं उनमें तावील की गई है। फमस्जिदुल जामिई मुतअव्वलुन भी मस्जिदिल वक्तिल जामिई, तो मस्जिदुल जामिया जो है जो मुजा मुजाफिले हैं मुतअव्वलुन, इनमें तावील की गई है भी मस्जिदिल वक्तिल जामिई, कि यहां अलवक्त का लफ्ज क्या है, मुकद्दर है महजूफ है, तो ये इसमें ताबील की गई है बि मस्जिदिल वक्तिल जामिई व जालिका यहतमिलु मानयैनी, और ये दो मानी का इहतमाल रखता है। इन्होंने क्या कहा, मस्जिदुल जामिअ ये किस ताबील में है, मस्जिदुल वक्तिल जामिअ, तवज्जो है। अब साहिब जामी बतलाएंगे कि ताबील तो इन्होंने ये की है, लेकिन इस तावील में दो एहतमाल है कि इनके कहने का क्या माना। उलमाए नहव क्या फरमाते हैं बसरा वाले, कि मस्जिदुल जामिया किस माना में है, मस्जिदुल वक्तिल जामिया के माना में है, तो उन्होंने यह तावील की है। अब इस तावील का माना क्या है, एक माना तो मैंने बयान कर दिया कि मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ नहीं है बल्कि किसकी तरफ है, अल वक्त की तरफ, और नीज अल जामिया وہ مسجد کی صفت نہیں ہے, وہ الوقت کی صفت ہے. توجہ ہے, ایک یہ معنی اور ایک اور معنی, دو معنی بیان کریں گے صاحب جامع. بلکہ پہلے ان کو سمجھ لو, دونوں کو سمجھ لیں. دیکھو بھائی, صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ انہوں نے کہا مسجد الجامع, اس کے اندر کیا تعویل کی گئی ہے, یہ کس معنی میں ہے, مسجد الوقت الجامع. یعنی گویا کہ ان علماء نحو کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا لفظ یہاں مقدر ہے, وقت کا لفظ یہاں مقدر ہے, اور مسجد کی اضافت اس وقت کی طرف ہو رہی ہے, اس الجامع کی طرف نہیں. تو مضاف الی الوقت ہوا کہ الجامع ہوا, الوقت ہوا. اور الجامع وہ مسجد کی صفت ہے یا الوقت کی صفت ہے؟ الوقت کی صفت ہے. تو نہ تو موصوف کی اضافت ہوئی صفت کی طرف, اور نہ صفت جو ہے وہ مضاف کی صفت ہے, وہ تو مقدر کی صفت ہے. تو اس صورت میں یہاں کیا ہے, الوقت کا لفظ مقدر ہے. تو دو طریقوں سے گویا اعتراض کا جواب بن گیا. کس طرح؟ دو وجہوں سے. اصل میں کیا تھا, مسجد الجامع, مسجد مضاف, الجامع مضافون الیہ, لیکن اس میں کیا تعویل کی کہ اصل میں کیا ہے, مسجد الوقت الجامع. تو یہاں پر الوقت کا لفظ مقدر ہے, تو معلوم ہوا مسجد کی اضافت الجامع کی طرف نہیں ہو رہی, بلکہ کس کی طرف ہو رہی ہے, الوقت کی طرف. ایک یہ, اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ الجامع مسجد کی صفت ہے اور صفت کی طرف اضافت ہو رہی ہے, کہ نہیں, الجامع مسجد کی صفت ہے ہی نہیں, یہ الوقت کی صفت ہے. تو دو وجہ سے جواب ہو گیا. کس طرح؟ ایک تو جواب یہ کہ مسجد کی اضافت الجامع کی طرف نہیں ہو رہی, بلکہ کس کی طرف ہے, الوقت کی طرف. دوسرا یہ کہ الجامع آپ نے کہا تھا مسجد کی صفت ہے, کہ یہ مسجد کی صفت ہی نہیں ہے, یہ تو کس کی صفت ہے, الوقت کی صفت ہے. تو دو طرح سے جواب ہو گیا. دیکھیے بھائی, پہلے یہ جواب سمجھ لیجئے. کہتے ہیں فمسجد الجامع متأول بمسجد الوقت الجامع, کہ مسجد الجامع جو ہے اس میں تعویل کی گئی ہے مسجد الوقت الجامع کے ساتھ. وذالک یحتمل معنیین, اور یہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے, یہ تعویل جو کی یہ دو معنوں کا احتمال رکھتی ہے. احدہما, ان میں سے ایک یہ ہے کہ یکون الوقت مقدرا فی نظم الکلام, کہ وقت کا لفظ جو ہے وہ مقدر ہے نظم کلام میں, یعنی کلام کے لفظوں میں. نظم سے کیا مراد ہے, لفظ, کہ وقت کا لفظ مقدر ہے. توجہ ہے, وقت کا لفظ مقدر ہے, یعنی مقدر, قدر یقدر, تقدیر کا کیا معنی, فرض کرنا. تو یہاں بھی وقت کا لفظ فرض کر لو موجود ہے, وقت کا لفظ فرض کر لو موجود ہے. تو ان معنی میں سے احدہما, ان دو معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یکون الوقت مقدرا فی نظم الکلام, کہ وقت کا لفظ جو ہے وہ مقدر ہے اس کلام کے الفاظ میں. ویکون المسجد مضافا الیہ, اور یہ مسجد کا لفظ اس وقت کی طرف مضاف ہو ہے. والجامع صفۃ للوقت, اور وہ جامع جو ہے وہ وقت کی صفت ہے. فیندفع الایراد بوجہین, تو وہ جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا بوجہین, دو وجہ سے. دو وجہ سے کون سی دو وجہیں؟ کہتے ہیں فإن الجامع ليس مضافا الیہ, اس لیے کیونکہ جامع مضاف الیہ نہیں ہے. آپ نے تو کہا تھا مسجد مضاف ہے, الجامع مضاف الیہ ہے, تو موصوف کی اضافت ہو رہی ہے صفت کی طرف. کوفہ والوں نے کیا کہا تھا کہ مسجد مضاف ہے, الجامع مضافون الیہ, تو بتلا دیے کہ الجامع مضاف الیہ ہی نہیں ہے, مضاف الیہ الوقت ہے. اور نیز آپ نے کہا تھا کہ مسجد موصوف ہے, الجامع اس کی صفت ہے, اور پھر اضافت کر دی گئی, بتلایا کہ نہیں, جامع مسجد کی صفت ہی نہیں ہے. تو دو وجہ سے اعتراض رد ہو گیا. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَامِعَ لَيْسَ مُضَافًا إِلَيْهِ, اس لیے کیونکہ جامع جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہے. ولا صفتن للمضافی, اور نیز جامع جو ہے وہ مضاف کی صفت بھی نہیں ہے, وہ تو الوقت کی صفت ہے. وسانیہما, دوسرا معنی بیان کریں گے. ادھر دیکھیے, علماء نحو نے تعویل کی, انہوں نے کیا کہا کہ مسجد الجامع, یہ کس تعویل میں ہے, مسجد الوقت الجامع. ایک معنی تو بیان کر دیا صاحب جامع نے کہ یہاں الوقت کا لفظ مقدر ہے, اور اس صورت میں دو اعتبار سے جواب بن گیا. دو اعتبار سے, کس طرح, کہ مسجد کی اضافت الجامع کی طرف ہو ہی نہیں رہی, وہ تو الوقت کی طرف ہو رہی ہے, اور دوسرے یہ کہ الجامع جو ہے وہ مسجد کی صفت ہی نہیں ہے, وہ تو الوقت کی صفت ہے. توجہ ہے. اب دوسرے معنی بیان کریں گے. وسانیہما, اور ان معنوں میں سے دوسرا معنی یہ ہے کہ یکون الوقت محذوفا, کہ وقت کا لفظ یہاں محذوف ہے, यहां वक्त का लफ्ज था लेकिन उसको हजफ कर दिया गया और सिफत को उसका कायम मकाम कर दिया गया। पहली तरकीब के मुताबिक वक्त का लफ्ज यहां मुकद्दर है और अल मुकद्दर कल मलफूज, मुकद्दर इसी तरह होता है जैसे मलफूज है। तो पहली तरकीब के मुताबिक अल वक्त का लफ्ज मुकद्दर है और मस्जिद की इजाफत अल वक्त की तरफ हो रही है, अल जामे की तरफ नहीं हो रही। दूसरी तरकीब के मुताबिक मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ ही हो रही है लेकिन यहां पहले था मस्जिदुल वक्तिल जामे, फिर इस वक्त को हजफ कर दिया और अल जामे सिफत को उसका कायम मकाम बना दिया, अल जामे को उस वक्त का कायम मकाम बना दी। पहली तरकीब में कायम मकाम नहीं बनाया था, मुजाफिल है उसी वक्त को करार दिया था। अब दूसरी तरकीब में कहेंगे वक्त था लेकिन वो जा चुका और अल जामिया ने उसकी जगह पकड़ ली और ये उसके कायम मकाम हो गया। ये क्या हो गया? ये सिफत मौसूफ के कायम मकाम हो गई। ये इसी तरह है, ये इसी तरह है जैसे अस्वद का माना काली चीज, कोई भी काली चीज हो उसको क्या कहते हैं? अस्वद। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरबों के यहां एक काले रंग का सांप था, उसका नाम ही अस्वद पड़ गया, उसका नाम ही अस्वद पड़ गया। तो अब अस्वद बोलकर वो काला सांप मुराद लेते हैं, गोया गोया वो सिफत ही उसका नाम पड़ गई। सिफत ही वो काले रंग का था ना, लेकिन वही सिफत उसका क्या बन गई? नाम बन गई। अब मौसूफ के जिक्र की कोई हाजत नहीं, ये सिफत उस मौसूफ के कायम मकाम हो गई है, ये इसका नाम बन गई है। यहां पर भी अलवक्तुल जामिया था, फिर अलवक्त हजफ हुआ, अलजामिया क्या बन गई? उसके कायम मकाम बन गई। तो गोया अलजामिया के अंदर ही वक्त वाला माना आ गया, जैसे वो अस्वद सांप का नाम रखा था तो उसके अंदर ही गोया मौसूफ आ गया था, वहां मौसूफ को अलग जिक्र करने की कोई हाजत नहीं, वो सिफत ही मौसूफ के कायम मकाम हो गई थी। तो यहां पर भी असल में तो था मस्जिदुल वक्तिल जामिया लेकिन फिर वक्त को क्या कर दिया? हजफ। और सिफत को क्या कर दिया? उसके कायम मकाम। और ये सिफत इसी तरह उसके कायम मकाम हो गई जैसे ये नाम ही बन गई। असल में था अल वक्तुल जामिया लेकिन फिर वक्त हजफ किया, अल जामिया को उसका कायम मकाम बना दिया। अब अल जामिया कहो तो इसका माना है वक्त जामे। अब अल जामिया का हो तो क्या माना? वक्त जामे। वक्त तो महजूफ है लेकिन यह सिफत क्या है? उसके कायम मकाम। जैसे अस्वद का माना काली चीज था लेकिन अब अस्वद बोलो तो क्या मुराद होता है? काला सांप। तो यहां भी अल जामिया का हो तो क्या माना होता है? अल वक्तुल जामे होता है। तो अल वक्त को जिक्र ही नहीं करते, यह सिफत उसके कायम मकाम हो गई है, यह उसके नाम की तरह ही बन गई है। तो अब जब यह उसके नाम की तरह बन गई तो अब इसकी तरफ मस्जिद की इजाफत हो गई, तो अब अल जामिया मुजाफिले है, अल जामिया मुजाफिले है और वक्त का लफ्ज यहां महजूफ है, जा चुका है, खत्म हो चुका है। पहली तरकीब में क्या था? वक्त मुकद्दर था तो मस्जिद की इजाफत वक्त की तरफ हो रही थी, अल जामिया की तरफ नहीं, लेकिन अब मस्जिद की इजाफत जामे की तरफ ही हो रही है, वक्त जा चुका है, यहां से हजफ हो चुका है। तो अब मस्जिद की इजाफत किसकी तरफ? अल जामिया की तरफ है। लेकिन अल जामिया मस्जिद की सिफत नहीं, वो वक्त महजूफ की सिफत है। अल जामिया मस्जिद की सिफत नहीं बल्कि वक्त महजूफ की सिफत है। पहले में क्या था? पहले में दो चीजें थी कि मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ है ही नहीं और यहां मस्जिद की इजाफत तो अल जामे की तरफ ही है, और वहां दूसरी चीज यह थी कि अल जामे मस्जिद की सिफत नहीं है बल्कि अल वक्त की सिफत है, और वो बात यहां भी मौजूद है कि अल जामे ये मस्जिद की सिफत नहीं है बल्कि किसकी है? अल वक्त की। तो वहां दो चीजें थी, मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ नहीं है बल्कि अल वक्त की तरफ है, और अल जामे सिफत नहीं है मस्जिद की बल्कि अल वक्त की सिफत है। लेकिन यहां सिर्फ एक सूरत है, यहां मस्जिद की इजाफत अल वक्त की तरफ नहीं है बल्कि अल जामे की तरफ ही है। दूसरे जवाब में किसकी तरफ? मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ ही है, अल वक्त तो जा चुका है। हां अलबत्ता अल जामे मस्जिद की सिफत नहीं है बल्कि वक्त महजूफ की सिफत है। बात समझ में, फर्क समझ में आया? तो कहते हैं वसानी हिमा, और उन दो मानों में से दूसरा जो है कि यकून अल वक्त महजूफन, वो ये कि वक्त जो है वो महजूफ है, वल जामे का इमाम मकाम हो, और ये जामे का लफ उस वक्त महजूफ का यानी उस मौसूफ का कायम मकाम है। मुन तवियन अलैही, इन तवा यन तवी का माना मुश्तमिल होना, यानी मुन तवियन अलैही और ये जामे उस पर मुश्तमिल है। भाई देखो ना, पहले क्या था? अलवक्तुल जामिया, फिर अलवक्त को हजफ कर दिया और ये जामे उसका कायम मकाम बन गया। अब जब अल जामिया बोले तो क्या मुराद है? मुराद वही अलवक्त उलजामे है। जैसे वो सांप का नाम क्या था, अस्वद, अस्वद तो सिफत है, अस्वद का माना तो काली चीज, इसके लिए तो कोई मौसूफ चाहिए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उस काले रंग के सांप का नाम बन गया। अब अस्वद बोलते हैं तो यहां वही काले रंग का सांप मुराद है। यहां पर भी इसी तरह, पहले क्या था अलवक्तुल जामे, फिर अलवक्त चला गया और अलजामे क्या हुआ, उसका कायम मकाम। अब जब अलजामे बोला तो इससे क्या मुराद है, वक्ते जामे, ये उसके लिए नाम की तरह बन गया। किसकी तरह बन गया, नाम की तरह बन गया। तो लिहाजा गोया जब जामे कहा तो इसी के अंदर वक्त भी आ गया या नहीं, तो गोया ये जामे उस वक्त यानी मौसूफ पर मुश्तमिल है, वो इसी के अंदर आ गया। जामे कहते ही हमें पता चल गया कि वक्त जामे मुराद है, वक्त कहने की जरूरत नहीं, यह माना है। फिर देखो वसानी हिमार, दूसरा माना यह कि यकून अल वक्त महजूफन, के वक्त महजूफ हो, वल जामे कायम मकाम हो, और जामे जो है वो उसका कायम मकाम है, मुंतवियन अलैही, जो उस पर मुश्तमिल है, मुश्तमिल है। फयकून बी मंजिलत सिफातिल गालिबती, तो ये सिफाते गालिबा के दर्जे में हुआ, ये किसके दर्जे में हो गया, जाम। जैसे देखो अस्वद वो सिफते गालिबा है, उसका नाम बन गई, यहां भी अलजामिया जो है सिफते गालिबा है, इस वक्त का नाम बन गई। तो ये फयकून बी मंजिलत सिफातिल गालिबती, तो ये अलजामिया जो है सिफाते गालिबा के दर्जे में हो गया। फयुजाफुल मस्जिद इलैही, तो फिर इसकी तरह मस्जिद की इजाफत कर दी गई। फयंदफ़ियुल इरादु बिवज़हिन वाहिदिन, तो इस सूरत में एतराज दूर हो गया एक ही वजह पर, वह हुआ और वो ये कि अन्नल जामिअ लैसा सिफतन लिल मुज़ाफ़ी, कि जामिअ जो है वो मुज़ाफ़ की सिफत नहीं, मुज़ाफ़िले तो है लेकिन मुज़ाफ़ की सिफत नहीं, जबकि पहली सूरत में जामे मुज़ाफ़िले भी नहीं थी और मुज़ाफ़ के लिए सिफत भी नहीं थी, लेकिन यहां मुज़ाफ़िले तो है लेकिन सिफत नहीं। तो कहते हैं वाला हादल कियासी सलातुल उला व बकलतुल हमका मुतअव्वलुन, और इसी कियास पर सलातुल उला और बकलतुल हमका जो है उनमें तावील की गई है। बिसलातिस साअतिल उला, कि क्या है सलातिस साअतिल उला, पहली घड़ी की नमाज, पहली घड़ी यानी जवाल के बाद जो पहली घड़ी है, या हर नमाज के लिए जो पहली घड़ी है जिसमें फर्ज नमाज अदा की जाती है बा जमात बई। वह बकलतुल हब्बतिल हमकाई, और इसी तरह बकलतुल हमका में तावील की गई है बकलतुल हब्बतिल हमका पर अलल एहतमालैनिल मस्कूरैनी, उन्हीं दो मस्कूरा एहतमालों पर, यानी इन दोनों में भी वही दोनों एहतमाल जारी होंगे। या तो एक सूरत यह बनाओ कि सलातुल उला, इसके अंदर असाअत का लफ्ज मुकद्दर निकाल लो, तो सलात का लफ्ज अल उला की तरफ मुजाफ ही नहीं है, असाअत की तरफ मुजाफ है, और अल उला सलात की सिफत नहीं है, असाअत की सिफत है। या दूसरी सूरत यह है कि असाअतुल उला था, असाअत मौसूफ था, अल उला सिफत, फिर असाअत को खत्म कर दिया, अल उला उसके कायम मकाम हो गई, अब अल उला से वही साअत उला ही मुराद होती है, तो यह सिफात गालिबा के दर्जे में हुआ, और इस सूरत में इसकी तरफ इजाफत कर दी, किसकी, सलात की। तो सलात की इजाफत है तो अल उला की तरफ ही, लेकिन अल उला सलात की सिफत नहीं है बल्कि असाअत की सिफत है। बात समझ में आ गई, यही दो एहतमाल बकलतुल हमका में भी जारी होंगे। आगे देखिए लाकिन हादत तावील ला यतमशा फी जानिबिल गर्बी, लेकिन ये वाली तावील जो है ला यतमशा ऐ ला यजरी, ये तावील जारी नहीं होती फी जानिबिल गर्बी, किसके अंदर, जानिब गर्बी, लेकिन ये तावील ला यतमशा फी जानिबिल गर्बी, ये तावील जानिब गर्बी में जारी नहीं होती। फइन्नहु ला शक्का, इसलिए क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं, अन्नल मकसूदा तौसीफुल जानिबी बिल गर्बियती, इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं जानिबुल गर्बी, इधर देखिए जानिबुल गर्बी, इसमें तावील क्या की, जानिबुल मकानिल गर्बी, लेकिन साहिब जामी फरमा रहे हैं कि यहां पर मकान की सिफत गर्बी लाना मकसूद नहीं है बल्कि जानिब की सिफत ही गर्बी लाना मकसूद है। साहिब काफिया ने तो तावील जिक्र की, उलमा क्या जिक्र करते हैं, इसमें क्या तावील की गई है, जानिबुल मकानिल गर्बी, तवज्जो है। तो यहां पर जानिब की इजाफत गर्बी की तरफ नहीं हो रही बल्कि मकान की तरफ हो रही है, और अल गर्बी मकान की सिफत है, जानिब की सिफत नहीं। साहिब जामी फरमा रहे हैं कि यह तावील जो है ये जानिबुल गर्बी में नहीं चलेगी, इसलिए क्योंकि जानिबुल गर्बी के अंदर, जानिबुल गर्बी का क्या माना, मगरबी जानिब, یعنی جو جانب مغرب کی طرف ہے وہ مراد ہے. تو جانب الغربی کے اندر, جانب الغربی کے اندر یہ جو غربی لائی گئی ہے یہ جانب ہی کی صفت بنانا مقصود ہے. تو الجانب ہوا موصوف, الغربی ہوئی صفت, تو یہاں صفت کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ موصوف کی طرف. تو وہ جو تاویلیں باقیوں میں ہم نے ذکر کر دیں وہ اس کے اندر جاری نہیں ہوتی. اگر آپ یوں کہیں جانب المکان الغربی, صاحب جامی نے بتا دیا کہ جانب الغربی اس کے اندر, اس غربی کو کس کی صفت بنانا مقصود ہے؟ جانب ہی کی صفت بنانا مقصود ہے. وہ جو مکان آپ نے نکالا ہے اس مکان کی صفت بنانا مقصود نہیں ہے. دیکھو بھائی, فَإِنَّهُ لَا شَكَّ, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان المقصود توصیف الجانب بالغربیتی, کہ مقصود جو ہے وہ جانب کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا ہے. ان المقصود, کہ مقصود جو ہے توصیف الجانب بالغربیتی, جانب کو موصوف کرنا ہے غربی کے ساتھ. لا توصیف مکانین, نہ کہ اس مکان کو موصوف کرنا ہے, ہوا جانب ہو کہ وہ جانب اس کی مکان کی جانب ہے, بہا اس غربیہ کے ساتھ. یہ ذرا مشکل عبارت ہے, اس کو سمجھ لیں, اس کو سمجھ لیں. ذرا ذرا اپنے سامنے لکھیے بھائی, کاپی پر لکھیے بھائی, لکھیے بھائی جانب الغربی, لکھیے بھائی جانب الغربی. یہ دیکھو یہ اضافت کے ساتھ ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اسی کے آگے تھوڑا سے فاصلے پر لکھ لیں جانب المکان الغربی, جانب المکان الغربی. توجہ ہے. اب ان لفظوں پہ نظر رکھنا, صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو جانب الغربی آیا اس میں کیا تعویل کی گئی, جانب المکان الغربی کی تعویل کی گئی. لیکن جو ہم نے پچھلی تقریریں کی وہ تقریریں یہاں جاری نہیں ہو سکتی, اس لیے کیونکہ یہاں پر جانب ہی جو مضاف ہے اسی کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا مقصود ہے. جانب الغربی کے اندر یہ جو غربی آیا یہ اسی جانب کی صفت بنانا مقصود ہے. وہ جو مکان آپ نے محذوف نکالا اس کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا یہاں مقصود نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو تعویل کیا کی, جانب المکان الغربی. ترجمہ کیا ہے؟ مغربی مکان کی جانب. اور جانب الغربی میں مقصود کیا تھا؟ مغربی جانب. وہاں مغربی جانب بتلانا مقصود ہے, مغربی مکان کی جانب مقصود نہیں ہے. کہ مغرب کی طرف ایک جگہ ہے اس کی جانب بتلانا مقصود نہیں. توجہ سے سمجھو, گہری بات ہے. جانب الغربی یہ کیا معنی؟ مغربی جانب, یعنی جانب کو موصوف کرنا مقصود ہے مغربی کے ساتھ. کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ زید مکان کے مغربی جانب کھڑا ہے, زید مکان کے, تو یہاں اس مکان کی مغربی جانب مراد ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مکان کی جو مغربی جانب جو مکان ہے اس کی جانب مقصود ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مشکل بات ہے, گہری بات ہے. یہاں مغربی جانب مقصود ہے, ایسا نہیں ہے. ذرا عبارت پہ نظر رکھو, جانب المکان الغربی. غربی کس کی صفت بنا دی؟ مکان کی. ایسا مکان جو مغربی جانب ہے, ایسا مکان
جو مغربی جانب,
اس کی جانب مقصود نہیں ہے. دیکھو یہ مثلا یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, اس مسجد کی ایک مغربی جانب ہے, توجہ ہے. تو جب میں نے جانب الغربی کہا تو اس کا کیا مطلب؟ اس مسجد کے مغربی جانب مثلا زید کھڑا ہے. اور اگر آپ کی تعویل مان لی جائے کہ یہاں مکان کا لفظ نکالیں گے تو معنی کیا بن جائے گا؟ جانب المکان الغربی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کے مغربی جانب ایک مکان ہے, ایک جگہ ہے. مغربی جانب ایک جگہ ہے, وہ کیا ہے؟ مکان مغربی ہے یا نہیں؟ اس مسجد کا مکان مغربی ہے, مغربی جانب ہے. اس مکان کی جانب مقصود نہیں ہے. اس مکان کی جانب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, شمال والی بھی, مشرق والی بھی, مغرب والی بھی. مکان کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف. اس کی جانب, اس کی کون سی جانب؟ مشرق والی, مغرب والی, شمال والی, جنوب والی. تو اس مغربی مکان کی جانب مقصود نہیں ہے. سمجھ میں آ گئے؟ پھر دوبارہ غور کر لو, پھر سنو. मैंने कहा मसलन ये मस्जिद है, इस मस्जिद की एक मगरबी जानिब है, मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जैद जानिब गर्बी में है, जैद जानिब गर्बी में है, तो मैंने जानिब को मुजाफ बनाया और अल गर्बी को मुजाफोन इले बनाया, मेरी मुराद मगरबी जानिब ही है, ये जानिब की ही सिफत है गर्बी भाई। तो मेरा मतलब क्या है, मस्जिद की जो मगरबी जानिब है उस तरफ जैद खड़ा है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, ये जो तरकीब पे नजर रखो, जानिबुल मकान इल गर्बी, ये मगरबी मकान जो है उसकी जानिब, मसलन इस मस्जिद के मगरबी तरफ एक मकान है, तो ये मकान कौन सा हुआ, गर्बी, और इसकी जानिब, इसकी जानिब तो चारों तरफ जो भी जानिब है वो इसकी जानिब है, तो उस मगरबी मकान की जानिब बतलाना मकसूद नहीं है, बल्कि जानिब ही को मौसूफ करना मकसूद है मगरबी के साथ। फर्क समझ में आया, तो यह माना है। फिर देखिए, लाकिन हादत तावील ला यतमशा फी जानिबिल गर्बी, लेकिन यह तावील जो है जानिबुल गर्बी में जारी नहीं होती। फइन्नहु ला शक का, इसलिए क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि अन्नल मकसूदा तौसीफुल जानिबी बिल गर्बी थी, कि जानिब को मौसूफ करना मकसूद है गर्बी के साथ। ला तौसीफु मकान इन, आगे आ रहा है बिहा, मकान को उस गर्बी के साथ मौसूफ करना मकसूद नहीं है। तवज्जो है, ला तौसी इबारत पे नजर रखो, ला तौसीफु मकानिन दरमियान में हुआ जानिबुहू है, इसको जरा छोड़ दो, ला तौसीफु मकानिन बिहा ऐ बिल गर्बियती, मकान को गर्बिया के साथ मौसूफ करना मकसूद नहीं है। बात समझ में आ गई, और दरमियान में मकान के जिक्र किया, हुआ जानिबुहू, ये इबारत समझ लो, बहुत मुश्किल इबारत है, तवज्जो से, हुआ ये हुआ जमीर राजे है उस जानिब को, वो जो जानिबुल गर्बी में जानिब का लफ्ज आया था, वो जो है वो से क्या मुराद, वो जानिब जो है, लेकिन जानिब का लफ्ज़ अब नहीं बोलना, तर्जमा सुनो, ना के मौसूफ करना ऐसा मकान, देखो मकान नकेरा है और हुआ जानिबुहू या मुब्तदा खबर है आपस में, हुआ मुब्तदा जानिबुहू उसकी खबर, और जानिबुहू की हा जमीर याद रखो ये मकान को राजे है, किसको, पहली हुआ जमीर है वो राजे है जानिब को, और ये जानिबुहू की हा जमीर राजे है मकान को, तो हुआ मुब्तदा और जानिबुहू उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, और जुमला इस्मिया नकेरा के बाद आए तो उसके लिए क्या बनता है, सिफत, तो और मौसूस सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूस से पहले ऐसा या ऐसी, तो मकान से पहले मैं ऐसा का लफ्ज लाऊंगा, ला तौसीफु मकानी, ना के मौसूफ करना ऐसे मकान को कि वो इस मकान की जानिब है, वो जानिब इस मकान की जानिब है, देखो मगरिब की तरफ एक मकान है, तो ये क्या हुआ, मकाने गर्बी, मकाने गर्बी, उस मकान की जानिब, जरा जरा तरकीब पे नजर रखो, जानिबुल मकानिल गर्बी, ये मकान गर्बी जो है इसकी जानिब, इसकी मकान गर्बी, तो देखो मस्जिद की मगरबी जानिब एक मकान है, उस मगरबी मकान की जानिब, तो ये जानिब जो जिक्र हुई जानिबुल गर्बी, ये जो जानिब जिक्र हुआ ये उस मकान की जानिब हो ऐसा नहीं है। क्या क्या, फिर समझो, फिर इबारत पे नजर रखो किताब पर, ला तौसीफु मकानिन, यहां ये मकसूद नहीं है कि मौसूफ किया जाए मकानिन एक ऐसे मकान को कि हुआ जानिबुहू, कि वो जो जानिब जिक्र हुई है लफ्जों के अंदर वो इस मकान की जानिब हो, इस मकान को मौसूफ करना बिहा गर्बी के साथ ये मकसूद नहीं है। बात समझ में आ गई कि वो जो मकान जो गर्बी में है, ये जो जानिबुल गर्बी में लफ्ज़ जानिब जिक्र हुआ है, ये जानिब उस मकान की जानिब हो और उस मकान को गर्बी से मौसूफ करना मकसूद हो ऐसा नहीं है। क्या कि ये जो जानिब जिक्र हुई लफ्जों में, ये जानिब ये उस मकान की एक जानिब हो और उस मकान को गर्बी के साथ मौसूफ करना मकसूद हो ऐसा नहीं है। ये जो लफ्जों में जानिब जिक्र हुआ जानिबुल गर्बी, आपने क्या कहा जानिबुल मकानिल गर्बी, तो ये जो जानिब लफ्जों, इधर देखिए, जो ये जो जानिब लफ्जों में जिक्र हुआ, ये जानिब जो है इस जानिब से कौन सी जानिब मुराद है, इस मकान की एक जानिब मुराद है और इस मकान को गर्बी के साथ मौसूफ करना मकसूद हो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। ये माना है ला तौसीफ मकानिन हुआ जानिबुहू बिहा, और ये मकसूद नहीं है कि मौसूफ किया जाए ऐसे मकान को कि वो जो जानिब जो जिक्र हो रही है वो इस मकान की एक जानिब हो। इस मकान को मौसूफ करना गरबी के साथ ये मकसूद नहीं है। अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल जी, अब एक कमजोर जवाब जिक्र करेंगे। आपने क्या कहा, इधर देखिए जानिबुल गरबी, ये इसमें गरबी के साथ जानिब ही को मौसूफ करना मकसूद है। वो मकान जिसकी ये जानिब है उस मकान को गरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद नहीं है। अब इसका क्या जवाब दें, अब एक कमजोर जवाब जिक्र करेंगे। अल्लाहुम्मा इल्ला युकाल के साथ मैंने बताया था कमजोर जवाब जिक्र किया जाता है, तो साहिब जामी जवाब देंगे भाई जवाब को समझने के लिए, या जवाब ये कि भाई एक मकान कुल का बना लें और उसका एक जुज बना लें। जैसे देखो कापी पे जरा बनाओ भाई, कापी पर एक चौकोर डब्बा बनाओ, तीन चार इंच लंबा हो और तीन चार इंच ही चौड़ाई हो, चौड़ाई भी तीन चार इंच और ऊंचाई भी तीन चार इंच, एक डब्बा बना लो। बना लिया जी, ये है मकान, ये एक जगह है, ये क्या है एक जगह, और ये है कुल, ये है कुल। इसके एक जानिब इस डब्बे के अंदर, इधर देखिए ये जो आपने डब्बा बनाया मसलन, ये एक मकान है, ये एक जगह है। मकान का माना जगह, अरबी जुबान में मकान का क्या माना जगह, ये एक जगह है, ये कुल है और एक इसका जुज भी है वो भी मकान है। तो साहिबे जामी अब जवाब देना चाहते हैं कि एक मकान कुल है और उसी का एक जुज है वो भी क्या है मकान, मकान का जुज भी मकान ही होगा ना। तो लिहाजा आपने एक चौकोर डब्बा बनाया, ये है कुल, ये है वो मकान, ये जगह है। इसमें दाएं तरफ जो लकीर है उस लकीर के साथ अंदर की तरफ ऊपर से नीचे तक एक और लकीर खींचें, दोनों लकीरों के दरमियान थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। तो ये देखो अब ये जुज आ गया, ये सारा कुल है और इसके अंदर एक जुज भी है, ये कुल भी मकान और जुज भी मकान का जुज मकान ही होगा, तो कुल भी मकान और जुज भी मकान। अब तावील करने लगे हैं और ये मकान किस जानिब है, ये जो आपने जुज बनाया फर्ज करो ये मगरबी जानिब है, ये जो आपने एक जुज बनाया बारीक सा ये किस जानिब है मगरबी जानिब है, तो ये हुआ मकान गरबी, ये क्या है ये मकान गरबी हुआ, मगरबी जानिब हुई। अब जवाब देना चाहते हैं कि वहां गरबी के साथ जानिब को मौसूफ करना मकसूद है, मकान को गरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद नहीं। अब उसका एक जवाब देने लगे, कमजोर सा जवाब, कि देखें ये जो आपने मगरबी जानिब, ये इसके साथ लिखें भाई, ये जो छोटा सा मकान बनाया ये है मकान गरबी, मकान ये मकान गरबी है और ये जुज है और एक मकान है वो कुल है जिसके अंदर ये दाखिल है सारा, ये भी मकान है। तो ये क्या है मकान गरबी और ये इस कुल की एक जानिब है, ये कुल की जानिब है। तो अब इस मकान गरबी के शुरू में जानिब लिख दें, वही जो आपने इजाफत लिखी थी जानिबुल मकानिल गरबी, ये तो क्या बन गया जानिबुल मकानिल गरबी, तो जानिब हुआ मुजाफ और अल मकानिल गरबी हुआ मुजाफोन इले। और ये जान इधर देखिए जानिब की जो इजाफत हो रही है मकान गरबी की तरफ ये इजाफत बयानिया है, ये क्या है भाई, होता यह है मुजाफ और होता है मुजाफिल और होता है गुलाम जैदिन, गुलाम की जात और है जैद की जात और, लेकिन एक इजाफत बयानिया होती है। इजाफत बयानिया इसे कहते हैं कि मुजाफ इले बयान करता है मुजाफ का, यानी दोनों एक ही चीज होते हैं, मुजाफिले जो बाद में आ रहा है वो माकबल वाले मुजाफ का बयान करता है। तो यहां भी इजाफत बयानी बना लो, तो जानिबुल मकानिल गरबी वो जानिब, वो जानिब यानी के मकान गरबी, वो जानिब यानी के मकान गरबी, यानी जानिब और मकान गरबी दोनों एक ही चीज हैं, जानिब और जो जानिब है वही क्या है मकान गरबी है। तो दोनों में इजाफत बयानी हुई, इजाफत क्या थी जानिबुल मकानिल गरबी, बज़ाहिर लगता है जानिब और है मकान गरबी और है, लेकिन यह इजाफत कौन सी है? बयानी है, यानी जानिब और मकान गरबी दोनों एक ही चीज है। वह जानिब क्या है? मकान गरबी है। तो यहां पर भी देख लो, यह जानिब है, ये जो आपने छोटा सा एक जुज बनाया ये जानिब है, और कौन सी जानिब है? मकान गरबी है। बात समझ में आ गई? तो यूं कि साहिब जामी फरमाते हैं ये जवाब एक कमजोर सा दिया जा सकता है कि इन्होंने कहा कि जानिबुल गरबी किस माना में है? जानिबुल मकानिल गरबी। तो हम यूं कहते हैं कि यहां मकान एक कुल है, एक कुल है और एक जुज है, और ये जो जानिब की इजाफत हो रही है मकान गरबी की तरफ, ये इजाफत कौन सी है? बयानी है। तो वो जानिब वो ही जो है वो मकान गरबी भी है। तो इस सूरत में ये हम एक जवाब दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी कमजोर जवाब है, कोई कवी जवाब नहीं है। तो कहते हैं अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल, मैंने बताया था अल्लाहुम्मा इल्ला अय्युकाल, ये असल में तकदीर इबारत क्या है? अल्लाहुम्मा ला मखलसा ली अन हाजा ले एतराजी, अल्लाह मेरे लिए तो इस इतराज से छुटकारे का कोई जवाब नहीं है। इल्ला अय्युकाल, मगर यह कि यूं कहा जाए हुना का मकानानी, कि यहां दो मकान हैं, जुज उन व कुल उन, एक जुज है वो भी मकान और एक कुल है वो भी मकान है। फल मकान उल्लदी उजीफ इलैहिल जानिबू, बस वो मकान जिसकी तरफ जानिब की इजाफत की गई, जानिबुल मकानिल गर्बी, ये जानिब की इजाफत किसकी तरफ हो रही है? मकान गर्बी की तरफ। ये जो जानिब की इजाफत मकान की तरफ हो रही है ये मकान जुज है, ये क्या है? जुज है। तो फल मकान उल्लदी उजीफ इलैहिल जानिबू, बस वो मकान जिसकी तरफ जानिब की इजाफत की गई है, हुवल जुज, वो जुज है। वल इजाफतु बयानियतुन, और इजाफत क्या है? बयानिया है, यानी जानिब और मकान गरबी दोनों एक ही चीज है। जो जानिब है वही क्या है? मकान गरबी भी है। वल मकान उल्लदी उतुबिरल जानिबू बिन निस्बति इलैही, और वो मकान के एतबार किया गया है जानिब का बिन निस्बति इलैही, उसकी तरफ निस्बत करते हुए, हुवल कुल्लु, वो क्या है? कुल। ये जो कुल बनाया इसकी एक जानिब है, देखो वो भी क्या है? मकान, और कुल भी क्या है? मकान। तो कहते हैं वल मकान उल्लदी उतुबिरल जानिबू बिन निस्बति इलैही हुवल कुल्लु, और वो मकान के जिसकी निस्बत से जानिब का एतबार किया गया है वो कुल है। फयस्तकीमुल माना, तो इस सूरत में माना क्या हो जाता है? मुस्तकीम हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। इन्होंने क्या कहा कि जानिबुल गरबी, इसमें क्या तावील की? जानिबुल मकानिल गरबी। तो साहिब जामी ने बतलाया कि यह तावील इसमें नहीं चलेगी, इसलिए क्योंकि यहां जानिब को गरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद है, वो मकान जिसकी तरफ जानिब की इजाफत हो रही है उसको गरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद नहीं है। और हां, एक कमजोर जवाब हम ये दे सकते हैं कि यहां दो मकान हैं, एक मकान कुल है और एक जुज है, और वह जुज मकान किस जानिब में है? गरबी जानिब में है। वो जूज क्या है? गरबी जानिब में है, और वही जानिब भी वही और गरबी मकान भी वही है। तो इजाफत बयानी है, जानिबुल मकानिल गरबी, जानिब की इजाफत हो रही है मकान गरबी की तरफ, जो जानिब है वही मकान गरबी है, दोनों कोई अलग चीजें नहीं है, इजाफत बयानी है। और जो जानिब जिक्र की जा रही है ये कुल के एतबार से जिक्र की जा रही है, जो पूरा आपने डब्बा बनाया ये कुल के एतबार से जानिब गरबी जिक्र की जा रही है। बात समझ में आ गई? तो इस सूरत में माना सही हो जाता है, हल हो गया। चलिए बस, बेहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।